अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपसे मेरे से राजी हो। हरम बेहतरीन तरीके से आज के दिन में पारा नंबर 7 को ले भी सके और इसको जज्ब भी कर सके। बस दफ़ा इंसान कोशिश तो बहुत करता है लेकिन पूरी तरह फोकस रह नहीं पाता क्योंकि इंसान कमज़ोर है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वखुलिकल इंसान उदाइफा। तो उस वक्त आप ये सोचा करें कि आपका मेरा इस वक्त यहाँ आके बैठना और इन सारी चीज़ों को सीखना, क्या ये मुश्किल है? या अल्लाह ना करे कि इससे कोई मुश्किल हालात आ जाएं जो इस वक्त दुनिया में है और हम फिर अपने घरों में भी ना सकें। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने का एक ही तरीका है कि अपनी मौजूदा हालत को हर हालत से बेहतर समझें। और इसी तरह आप और मैं देखें कि ये सब कैसे होता है, आइए देखते हैं इस बारे को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम आज दौरे कुरान 2020 2020 में पारा नंबर 7 को देखेंगे। हकीकत यह है कि हर पारा एक बंडल ऑफ जेम्स भी है, और जिस तरह हम इसको थीम पर लेके चलते हैं तो मुझे हर दिन पढ़ाने के बाद ये एहसास होता है कि हकीकत में ये अल्लाह के कलाम ही की खूबी है कि आप इसको जिस रंग से भी देखते हैं ऐसे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ है। तो हम आज के पारे में जिन चीज़ों को जमा करेंगे वो चीज़ें कह लीजिए कि हमें उस वक्त जमा कर लेनी चाहिए थी जब हमने आंख खोली। तो पारा नंबर 7 का मौजू, जिसको बोलते हुए भी कहते हुए भी दिल धड़कता है, और वो है शिर्क का फितना। दौरे हाजिर में जो वायरसेस फैल चुके हैं, कोरोना उसमें से एक है, और इसी तरह के और बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज हमारे इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं जो कभी हमें खाली आंख से दिखते भी नहीं। उन सब से खतरनाक शिर्क का फितना है, और ये कोई नया फितना नहीं, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ था और आज भी मौजूद है। और ये वो चीज़ है कि जिसको अगर इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाए, अल्लाह की रहमतें ऐसी उतरें कि गोया के सारी इंसानियत खुद को जन्नत में महसूस करे। और ये चीज़ जिसको शिर्क कहते भी नहीं और समझते भी नहीं, तो मैं चाहूँगी कि इस मौजू की अहमियत के नाते से चंद चीज़ें आपको शिर्क से मुतल्लिक शुरू में ऐड करवाऊँ ताकि आप इसकी हकीकत तो समझें, क्योंकि इस फितने के शिकार को खुद भी नहीं पता होता कि वो इस फितने का शिकार हो चुका है। तो एक छोटा सा नोट लीजिएगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद आप यकीनन फिर इस पूरे पारे को बेहतरीन तरीके से जज्ब करेंगे। और छोटे छोटे जुमलों में इसको नोट कीजिए, इसके आपको नोट्स नहीं मिलेंगे कहीं भी। ये मैं आपका रब जोड़ रही हूँ इस बात से कि शिर्क होता क्या है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत सारे मुसलमान भी नहीं जानते, गैरों की तो हम क्या बात करें। तो चंद छोटे छोटे जुमले जो आपको मुझे इसकी असल दिखाएंगे। अरबी जुबान में शिर्क शीन रा काफ से है, और शिर्क का लफ्ज़ वही है जिसको उर्दू में आप और मैं शरीका कहते हैं। कोई भी शख्स शरीका पसंद नहीं करता। फिर अगली बात यह कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदायशी तौर पे शिर्क से पाक पैदा किया है। हर बच्चा जो दुनिया में आता है वो अल्लाह को एक मानता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में भेजने से पहले उनकी रूहों को एक जगह जमा किया था, उसका जिक्र इंशाल्लाह कल के पारे में आएगा, पारा नंबर 8 में, और एक वादा लिया था जिसको वादा अलस्त कहते हैं। और मेरी आपकी समेत दुनिया के वली पैगंबर रसूल अम्बिया कराम से लेकर फाजिर और काफिर तक की रूह वहाँ मौजूद थी। एक बिग गेट टुगेदर था रूहों का, सब अपनी उस फॉर्म में आए जिसमें वो उस वक्त थे। और अल्लाह ताला ने सबसे एक वादा लिया था जिसको आसान लफ्जों में कह दूँ कि दुनिया में जाकर किसको रब मानोगे, मुराद चाहे कि किसके आगे सजदे करोगे, किसके आगे झुकोगे, किससे मन्नतें मांगोगे, किसको मुश्किल कुशार दस्तगीर और हाजत रवा समझोगे, किसके सामने क़याम करोगे, किसके फैसलों पे राजी होगे, किसको हाकिम मानोगे, किसकी ज़रूरत ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महसूस करोगे। तो शिर्क की ये मुख्तलिफ़ किस्में जो आज हम सब समझते भी नहीं, लफ्ज शिरक आते ही हमारे जहन में बुत परस्ती आती है। हाँ, वो शिरक की एक ओपन फॉर्म तो है, लेकिन शिरक के इतने मुख्तलिफ दर्जे हैं कि जिसमें से कुछ तो दिखते भी नहीं। और आपने जो फरमाया कि शिरक ऐसे ही है जैसे अंधेरी रात में स्याह पहाड़ी पर चलती हुई चींटी नजर नहीं आती, इसी तरह शिरक भी नजर नहीं आता। हर दौर का शिरक रंग बदलता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान पाक में आप देखते हैं तो उन्होंने अपने हाथों से कुछ बुतों को तोड़ा था। इसका तذکرہ हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला सूरत अल अंबिया में। तो हम इसको भी कहते हैं कि उन्होंने शिर्क को अपनी तलवार से या अपनी कुदाल से खत्म किया। लेकिन याद रखिए कि हर दौर में शिर्क रंग बदलता है। किसी दौर में ये बुत परस्ती की शक्ल में आता है, किसी दौर में ये अल्लाह के मुकाबले पे ऐसे कवानीन बनाने के तौर पे सामने आता है कि जिसमें कह लीजिए कि अल्लाह की मर्जी कुछ और कानून बनाने वालों की मर्जी कुछ और। अल्लाह ताला के बताए हुए लाइफस्टाइल के मुकाबले में वो दूसरी तरफ आते हैं। और अगर मुश्किल लफ्ज बोल दूं तो शिर्क फिल इबादा भी है, शिर्क फिल तसव्वुफ भी है, शिर्क फिल सिफात भी है, शिर्क फिल हुक्म भी है। एक जुमला लिख लीजिए, क्रिएटर गॉड को मानना आसान है अकाउंटेबल गॉड के मुकाबले में। हर दौर में लोगों ने अल्लाह को खालिक तो माना है, हत्ता के ये दावा तो किसी बड़े से बड़े फिरौन ने भी नहीं किया था कि मैंने तुम्हें पैदा किया। और अगर करता भी तो अक्ल में आने वाली बात ही नहीं है कि मैं था ही नहीं तो सूरज चांद सितारे बन कैसे गए, यानी इस दुनिया को मैंने बनाया ये दावा किसी ने नहीं किया। तो खैर, फितरत में गुंदावा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बच्चा फितरत पे पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी बना देते हैं। होता कि एक इंसान जिस घर में जाता है पैदा होता है वो फिर उसी रंग में रंगा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक लोग तौहीद पे थे। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं और नबी भी हैं, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहले साहिबे शरीयत नबी माना जाता है। हुआ क्या? ये सब बातें आपको अहादीस में मिल जाएंगी और मैं चाह रही हूँ कि बड़ी आसान फहम बात में चंद जुमलों में आपको ये सफर तो सुना दूं कि इंसानियत फिर मारफत इलाही से और हुब्बे इलाही से गुजरते हुए शिर्क तक कहाँ पहुंच गई। हजरत ईसा अलैहि सलाम का बोलना इन्नी अब्दुल्ला, ये उस वादे अलस्त का नतीजा था। आज भी अगर किसी न्यू बॉर्न बेबी को मौका मिले तो वो यही कहेगा कि इन्नी अब्दुल्ला। और अब तो कहते हैं गुलाम को, पुजारी को, वर्शिपर को, परस्तार को। बच्चे को अल्लाह ताला ये सारी बातें सिखाकर भेजते हैं, बाद में वो जिस रंग में जिस माहौल में रहता है वो वही बोली बोलता है। अगर उसको खुशकिस्मती से एक ऐसी माँ और एक ऐसा बाप मिल जाता है जो मुवाहिद होता है तो बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ों को लेने लगता है। इसी तरह किसी भी मज़हब, जो अपने आप को हर मज़हब वाला ठीक कहता है तो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, यानी अगर एक बच्चा एक यहूदी माँ के घर में आया, एक ईसाई फैमिली में आया, एक हिंदू फैमिली में आया, एक बुद्धा फैमिली में आया, और इसी तरह और भी मज़ाहिब के नाम आप ले सकते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस रंग में रंगा जाता है। लेकिन हर बच्चे के अंदर मारफते इलाही का एक बीज होता है, एक ऐसा पायलट फ्लेम अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रख दिया कि जिसको अगर बाहर से जरा सा फितरत का नूर मिल जाए और इल्म की दौलत मिल जाए तो वो दीन पे आता है। आज जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, यानी जो पैदा तो किसी और घर में किए गए लेकिन बाद में समझ बूझ के साथ शऊर के साथ इस्लाम के करीब आए, और इस्लाम का नाम इसलिए बोला कि हर नबी के फॉलोअर मुस्लिम्स थे। तो आज के दौर में जो लफ्ज इस्लाम है ये कोई नया नाम नहीं है, इसको भी समझिएगा, क्योंकि शिर्क का मौजू समझ ही नहीं आ सकता जब तक अल्लाह के साथ ताल्लुक न समझ आए। तो पीछे चलिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ये चीज कैसे शुरू हुई। बहुत से लोगों में से कुछ लोग जो नेक थे, लोगों ने उनके बारे में ये तसव्वुर कायम किया कि ये बहुत नेक है, ये पहुंचे हुए हैं, इनकी वजह से अल्लाह ताला हमसे राजी है। अब हुआ क्योंकि वक्त के साथ साथ उनमें से एक एक का इंतकाल होता गया। उनमें से कुछ नाम आज भी कुरान पाक में महफूज हैं, लात, मनात, यौस, नसर। आप सूरत नूह में भी इसको देख सकते हैं, ये नाम उधर आए हैं। आप मिसाल ले लीजिए कि लात नाम की एक शख्सियत थी, उस शहर में बहुत नेक अच्छी मारूफ थी। तभी मौत का वक्त आया, दुनिया से चले गए। शैतान उस दौर के लोगों के पास आकर कहता है कि देखो तुम कितने खराब काम करते हो, लेकिन अभी तक तुम पे कोई अल्लाह की पकड़ नहीं आई, क्योंकि ये लात साहब की नेकियां थी। तो लिहाजा अब वो तो चले गए हैं दुनिया से, तो देखना बस तुम पे तो अल्लाह का कहर टूटेगा। अगर जरा सा अपना और उन लोगों का खैर ख्वाह होता तो ये कहता कि लात जैसे बनो। या नोट कीजिएगा, शिर्क का फितना हमेशा वहां फैलता है जहां लोग नेक लोगों जैसा बनने की बजाय उनका दामन थामना चाहते हैं, खुद उस रास्ते पे नहीं चलते जिस पे वो चले थे। हालांकि सूरत अल बकरा से पहले अल फातिहा के एक छोटे से तमहीदी नोट में देखिए, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता दिखा उन लोगों का जिस पर तेरे इनाम वाले चले। और इनाम वाले लोग नेक बुजुर्ग भी थे और अंबिया कराम तो थे ही, तो रास्ता नहीं मांगा। बस आज क्या किया, शैतान ने कहा देखो तुम एक काम करो कि इनकी कुछ शबीहें बना के घरों में रख लो। फायदा क्या होगा कि उनकी शबीहों की बरकत और उनके फैज से तुम अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे। पहली नस्ल ने यह काम किया। वक्त के साथ वो शबीहें जो हो सकता है आज की जुबान में आप कहें चौक और कोयले से बनी थी, वो मिटने लगी। अगली नस्ल के पास शैतान आकर कहता है देखो आज तक तो तुम इनकी वजह से बचे, और यही हर नेक इंसान के फौत होते हुए शैतान ने ये लोगों को पट्टी पढ़ाई। और होते होते फिर क्या हुआ कि वो शबीहें स्टैचूज में बदली, और जब स्टैचूज बना दिए कि चलो एक मजबूत चीज बना लो ताकि अगली नस्लों के काम आए, अगली नस्ल के पास आया कहा देखो ये तुम्हारे घर के कोने में एक स्टैचू रखा हुआ है जिसकी बरकत से तुम बचे हुए अल्लाह की पकड़ से। क्या करो, जब तुम अल्लाह की इबादत करते हो ना इसको सामने रख लो। देखिए शिर्क का आगाज कभी से नहीं हुआ कि शैतान को पूजो बुत को पूजो। आज भी अगर आपकी दस्तरस में कोई ऐसी फैमिली हो आपकी दोस्तों में, तो आप उससे पूछिएगा कि जब एक अपेरेंट शिर्क यानी उस स्टैचू की शक्ल में बनी हुई कोई मूर्ति कोई देवी उसके भी सामने खड़े होते हैं तो दिल में इरादा क्या होता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ पूरी दुनिया में एक भी ऐसा स्टैचू को पूजने वाला बुत को पूजने वाला इंसान नहीं जो ये कहे कि मैं इस बुत से मांग रहा हूं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि ये लकड़ी का है ये पत्थर का है। वो क्या कहेंगे, मैं मांग ऊपर वाले से रहा हूं, ये बुत मुझे उस तक पहुंचाएगा या उसे लेकर देगा। और हर बुत के पीछे कहानी है, कहीं कोई देवी है तो कहीं कोई दौलत की देवी है तो कोई हुस्न की है। ये बातें इस वक्त इतनी डिटेल में जाने वाली नहीं है, लेकिन आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि शिर्क का आगाज नंबर एक एग्जेजुरेशन से हुआ, शख्सियत परस्ती से हुआ, और फिर होते होते इबादत में उनको सामने रखने से, और फिर कहा चलो अब मांग तो ऊपर वाले से रहे हो ना बीच में जरा इनको भी रख लो। और इस तरह हुआ क्या, जिसमें हमने आज के पारे का मौजू रखा है, जरा से इस पे आइएगा। शिर्क का फितना मार्फते इलाही की कमी से होता है। इंसान जानता ही नहीं है मेरा रब क्या है, क्योंकि इसी पारे में आप देखिएगा इतने ज्यादा पॉइंट्स आप जमा करेंगे कि जिसमें वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, लोगों ने अल्लाह की कदर की ही नहीं जैसी कि उसकी कदर करने का हक था। और उसकी वजह क्या है कि वो मार्फत वो तौहीद का नूर जो बच्चे को दुनिया में देकर भेजा गया था वो नूर मद्धम हो गया। अभी पारे की पहली आयत में ही आप देखेंगे कहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई 100 मील दूर बैठे हुए हबशा के लोग, वो बादशाह जिसको निजाशी के नाम से आप और मैं जानते हैं, इतनी दूर बैठा हुआ जब अल्लाह के नबी का पैगाम उस तक किसी कासिद के हाथ ही पहुंचता है तो कैसे वो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता। हालांकि जिस जगह अल्लाह के नबी मौजूद थे, जहां पैदा हुए, जहां जवानियां गुजरी, जहां पैगाम दिया कि लोगो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तो वहां पे लोग आपको पत्थर मारते हैं। ताइफ के लोगों ने आपके जूतों तक में खून को डलवा दिया। तो क्या पता चला कि जब तक मारुफत इलाही नहीं होगी शिर्क का फितना खत्म नहीं होगा, और मारफत इलाही के लिए अल्लाह की कदर करनी पड़ेगी, और अल्लाह की कदर करने के लिए मुशाहदा हक करना पड़ेगा। इन नफी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफि लैलि वन नहारि लायात, कितनी दफा अभी तक आप पढ़ चुके हैं ये मजमून कि अल्लाह की कायनात पे गौर व फिक्र करो। हर रोज तहज्जुद में सूरत आले इमरान का जो आखिरी रुकू पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है वो क्या है, यही है। क्योंकि जब खुली आंख से तासुब भरे दिल को छोड़कर कोई शख्स अगर कायनात पे गौर कर ले, सूरज और चांद को देख ले, इन रात और दिन के आने जाने को देख ले, कश्तियों के पानी में तैरने को देख ले, और दरख्तों पे लगे पत्तों के रंग बदलने को देख ले, तो ये हो नहीं सकता कि उसको अल्लाह की कदर ना आए। और जब अल्लाह की कदर आती है तो मारफत इलाही तो होती है। और ये मिसाल हम इसी पारे के तकरीबन एंड के करीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल से पढ़ेंगे, यानी आपके पास ये दलाइल भी जमा हो रहे कि इसी पारे में हमने ये शिर्क का फितना क्यों रखा। यकीन करें मैं रात से इतनी बोझल हूँ, कम अज़ कम मैंने 6-7 दफ़ा ये पारा देखा है। इतने दलाइल हैं कि जैसे वो हाथ हो ना तो चीज़ उसमें थम नहीं रही। इस पारे के अंदर के मजमून के बोझ से कह लीजिए कि कंधे झुक रहे हैं। शिर्क की इतनी किस्में हैं, आप सूरत अल-अनाम से खास तौर पे आप नोट करके देखिएगा। तो होता क्या है कि जब लोग कायनात को देखते तो हैं लेकिन वो और नजर से। आज एथियज्म क्यों है? शिर्क की बदतरीन किस्म है एथियज्म। एक तो था ना कि अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बनाया। अब एक हल्की सी और मिसाल दे देती हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए दिल में दर्द है, मोहब्बत है, मचल रही है। और वही बात है, फला कबाख नफ्स कलासारिम इल्लम यू मिनु बिहाजल हदीस या सफ़ा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो तड़प थी कि जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में 2 से ज़ायद मुकाम पे कह दिया कि आप इस बात पे खुद को ज़िबा न कर लें, यानी कुड़ने लगे, जलने लगे कि ये ईमान क्यों नहीं लाते। तो मैं वाकई महसूस करती हूँ कि अल्लाह के नबी का क्या दिल उस वक्त दुखता होगा जब मक्का की गलियों में, तो छोड़ दीजिए, बैतुल्ला में 360 बुत रखे हुए थे। वो बैतुल्ला जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया। अब बताइए कि जब बैतुल्ला में बुत होंगे तो बाहर दुनिया में क्यों ना होंगे, और उस वक्त आपकी फिर तड़प कितनी थी। और ये बात मेरे और आपके लिए जो किसी भी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ लोग अल्लाह को नहीं मानते, या फिर अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं, या फिर एथियज्म के शिकार हैं, एग्नोस्टिक हैं कि देर इज़ नो पर्पज ऑफ लाइफ, तो हमारा दिल घटता है, हमारा दिल कुड़ता है। ये वाह पर मैं जाने। और ऐसे लोग जो आपकी दोस्तों में हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, अगर आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं कि आपका दिल नहीं चाहता कि इतनी प्यारी दोस्त को आप इस बुरे अंजाम से बचा लें जो मुशरिक के लिए, तो क्या पता चला कि इन सारी चीज़ों के रास्ते की एक बड़ी रुकावट थी जिसको असल में इस पारे में से हमने चुनना है, और वो है आबा परस्ती। आबा परस्ती क्या होती है? आबा बाप से है, अब्बू अब्बा अभी, तो आबा जमा है। और परस्ती क्या है? परस्तिश से, आपका परस्तार भी कहते हैं, वर्शिप। एक तो जुमले लिख लीजिए, बाप दादा यानी जो हमारे बड़े होते हैं उनकी बात माननी चाहिए। शर्त एक है कि वो अल्लाह की बात मानते हों। अल्लाह ताला ने हमें बड़ों की खिदमत का हुक्म दिया है, उनकी रिस्पेक्ट का हुक्म दिया है, लेकिन उनकी वर्शिप का हुक्म नहीं दिया। अगर हमारे बड़े हिदायत पे थे, अकायद उनके ठीक थे, और वो कुरान और सुन्नत के नूर में रंगे हुए थे, और उनके काम जो हमारी नानियाँ और दादियाँ करती थी कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी, तो फ़र्ज़ है आबा परस्ती। अपने बाप दादा की और अपनी माँ और नानी और दादियों की पैरवी करना, पैरवी कहते हैं उनके पाँव पे पाँव रखना, यानी उनके नक्शे कदम पे चलना, उनके लाइफस्टाइल को अपनाना हम पे फ़र्ज़ है। मसलन हमारी दादियाँ बाहया थी, बाहिजाब थी, बहुत ही झिझक थी उनमें, आपको मुझे भी ये करना चाहिए। वो बहुत सुघड़ थी, हमें भी सुघड़ होना चाहिए। वो पैसे बचाती थी, हमें भी बचाने चाहिए। वो रातों को उठ उठ के तहज्जुदों में रो रो के दुआएं करती थी नस्लों के लिए, हमें भी करना चाहिए। हमारे बाप हलाल को कमाने के हरीस थे, बहुत एक्टिव थे, हमारे दादा और नाना सच बोलते थे, हमें भी ये करना चाहिए। तो क्या पता चला, उनकी अच्छी बातों को मानना फर्ज है। लेकिन नंबर एक इल्म की कमी, और नंबर दो उनके फिर अपने बाप दादा के घर में वो कुछ देखने की वजह से अगर हमारी नानी और दादी और हमारे माँ और बाप ने कुछ ऐसे काम कर दिए जो आज इस कुरान का नूर पाने के बाद आपको मुझे खुल के दिखने लगे, इसमें रसूमात भी आती हैं, इसमें त्यौहार भी आते हैं, इसमें कुछ पका के खिलाने भी आते हैं, इसमें कई किस्म की नजरबंदियां भी आती हैं, तो उसको करने से पहले आपने मैंने एक दफा चेक करना। आज भी दुनिया में आप कोई चीज़ एकदम नहीं अप्लाई करते, उसको चेक करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं, तो हमारे दीन का गूगल कुरान और सुन्नत है। दो चीज़ों को लेकर अब मैं पारा शुरू करती हूँ, और बहुत सारी बातें आज अंदर हैं, और इस दुआ और दर्द के साथ ये पारे का टॉपिक रखा है कि अल्लाह इसकी वजह से दिल खोल दे। नंबर एक, जो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ क्योंकि वो मुसलमान घर में ही पैदा नहीं हुआ, इसका एक जवाब अभी से ले लीजिए। आपका एक बच्चा भी आके घर में पूछता है, मामा मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि आप और अब्बू मुसलमान थे, तो मेरे उस दोस्त का क्या कसूर है कि जो गैर मुस्लिम घर में पैदा हुआ, अब वो क्यों इस्लाम कबूल करे? ये जवाब आपको भी कई दफ़ा देना पड़ा होगा। आज इसको समझ लीजिए, ये जो चार कोनों में चीजें लिखी हैं ना, इन सब की रोशनी में अल्लाह सुबहाना ताला ने खुद तक पहुंचने के, और खुद तक के लफ्ज को लिखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात का सबसे बड़ा सच है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ये तर्जमा करते हैं लोग। आप अपनी जुबान में समझिए कायनात में ये चीज कि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं, ये नहीं कि अल्लाह है, देखिए मेरा कलमा ये नहीं इलाहुनल्लाह, इलाहुनल्लाह कितना आसान होता, ये क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, बलागत का भी असूल है कि लफ्ज थोड़े हों तो बात ज्यादा होती है, लेकिन अगर ये कहा जाता ना इलाहुना अल्लाह, हमारा इलाह अल्लाह है, तस्बीह पे पढ़ना भी आसान लगता लोगों को, लेकिन उसमें ये नहीं पता था कि इलाहुना तो अल्लाह है, किसी और का भी कोई है नहीं। ला की तलवार से सारे तागुतों, सारे बुतों, सारे शिर्क के मज़ाहिर को कत्ल करो, फिर इल्लल्लाह समझ आएगा। तो इंसान को कैसे अल्लाह तक पहुंचाया जाता है, इसके अमूमन चार हिस्से होते हैं, लिख लीजिए। नंबर एक आपको बता चुकी हूँ, प्रोग्रामिंग में, जिसको आज की जुबान में कहेंगे डाटा में फीड करके भेजा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वादे अलस्त की सूरत में। इसी की बुनियाद पे देखिए आज भी कई बच्चे जो रिवर्ट होते हैं या जवान होने पे रिवर्ट होते हैं, वो अंदर से पायलट फ्लेम जल जाता है, सिर्फ बाहर से कोई माचिस की तीली दिखा दे। कभी आपने देखा होगा पायलट फ्लेम चल रहा हो चूल्हे पे, तो आग लगने का डर होता है, क्योंकि कहीं भी जरा सी कोई हिलचुल हुई तो वो जलेगा। उन इंसानों की वो चीज अंदर आती है। इसकी बीस क्यों मिसालें हैं, आप रिवर्ट लोगों की कहानियां पढ़िए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसमें सब कॉमन है, ए टू जी, या बनी आदम, आदम से लेके क्यामत तक आने वाला आखिरी इंसान भी इस की रोशनी में बराबर है, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। दूसरी चीज अल्लाह ताला के एक होने की दलील में ये कायनात है जिसका आप मुशाहिदा करते हैं, सूरज चांद सितारे रात दिन के आपको मुझे सबको एक जैसे नहीं दिखते। ये तो नहीं कि मुसलमान को घास सबस दिखता है और गैर मुस्लिम को वो काला दिखता है, और मुसलमान के लिए तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है और उसके लिए भद्दी है, तो ये दूसरी चीज़ है कि आप इसको देखिए और सोचिए ये कौन बना रहा है। तीसरी चीज़ है अकल, अकल जब तक अक्ल सलीम रहती है ना, तो वो आपको बताती है कि अल्लाह एक ही है, वरना देखिए ना, दो ड्राइवर बिठा दीजिए किसी गाड़ी के चलाने के लिए तो क्या होगा, नहीं हो सकता। और आप पढ़ेंगे आगे जाकर इंशाल्लाह तआला 18वें पारे में कि अगर दो खुदा होते तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ता, लोगों ने कभी दो का कहा, एक खैर का खुदा एक शर का, ये चीज़ अल्लाह के नबी के दौर में भी ईरान और उसके इर्द गिर्द में थी, अहुरमन और यजदां के नाम पे। आज हम तीन खुदाओं का नज़रिया क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, जिसपे पिछले पारे में बहुत सारी आयतें गुजर गईं, ट्रिनिटी, सलास, तसलीस, और 4 करोड़ से जायद खुदाओं के दावेदार भी कुछ लोग हैं। हर वो चीज़ जिससे फ़ायदा मिला उसको भी खुदा समझ लिया, जिसका शर हुआ उसको भी किया। तो पढ़ा करें कंपैरेटिव रिलीजन, आप खुद देखेंगे कि एक इंसान जो कितना कीमती था, अशरफुल मखलूक, वो किसी ऐसी चीज़ को खुदा समझ ले या खुदा का अवतार समझ ले कि जो जुबान से भी ना ली जा सके। तो खैर क्या बात हुई, वापस आइए। पहली चीज़ है फितरत का वो अहद जो अल्लाह ने बच्चे में डाल दिया, दूसरी बात है कायनात का मुशाहिदा, तीसरी चीज़ है अकल। बस ये तीन तक तो कॉमन है आदम का हर बच्चा। एक चीज पे सिर्फ आप और मैं अगर सर सजदे में रख दें अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए, तो वो उम्मते मुहम्मदिया के लोगों को एक्स्ट्रा मिल गई, और वो क्या है, वही है इलाही, ये जिसको आप और मैं पढ़ रहे हैं, ये 6,000 से जायद आयतें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अथर के मोती, जिसको आप अहादीस नबवी कहते हैं। ये प्लस पॉइंट मुझे आपको मिला, यानी एक बच्चा जो मुसलमान घर में आता है तो पैदा होते ही कुरान सुन्नत का नाम सुनता है। तो आप देख लीजिए ये चार चीजें करके असल में अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रास्ते खोल दिए। अल्लाह करे कि मैं अपनी बात समझा चुकी हूँ। इस सारे मौजू को जिस आयत की रोशनी में हम यहाँ समझते हैं, वो आयत नंबर 104 है, वैजा कील वैलर रसूली कालू हसबुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलू कान आबाउहुम ला यालमून शैया वला यहतदून। सूरत अलनाम की आयत बिल्कुल पारे के एंड पे आएगी, हम इंशाल्लाह उस पे पहुंच कर तो जो बात कर सके, लेकिन यहाँ समझ लीजिए। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ इस कानून की तरह जो अल्लाह ने नाजिल किया है और आओ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरह, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है। इसको हाईलाइट कर लें, जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अब अल्लाह ताला का कमेंट सुनिए, क्या ये बाप दादा ही की तकलीद किए चले जाएंगे, ख्वा वो कुछ ना जानते हों और सही रास्ते की इन्हें खबर ही ना हो। ये है मसला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मबूस किए गए वो मक्का मुकरमा था, चारों तरफ शिर्क फैल चुका था, घर घर के बुत थे और घर घर में मुख्तलिफ खुदाओं को पूजा जाता था। तो जब पैगाम दिया गया, और देखिएगा पूरे 13 साल जो मक्की दौर गुजरता है, जो बिल्कुल नबूवत के आगाज़ का दिन था और उससे लेकर हिजरत मदीना तक, ये मक्की सूरतें हैं। खोल लीजिए, जो अगली सूरत माईदा के बाद हम पढ़ेंगे वो भी तो मक्की सूरत है, तभी तो ये अंदाज़ बदल रहा है। वरना अभी तक हमने जितनी सूरतें पढ़ी है ना, ये मदनी सूरतें हैं, इसमें अहकामात थे, डूज थे, डोंट्स थे। लेकिन अब इधर हम देखेंगे कि सूरत अलनाम में मक्की सूरतों में से एक सूरत है। तो क्या पता चला कि जब अल्लाह के नबी उस माहौल में आंख खोलते हैं जहां लोग शिर्क के मुर्तकिब हो चुके हैं, तो वहां जब उनको दावत दी जाती थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने बचपन से सुना होगा कि अल्लाह के नबी कोहे सफा पे गए, फिर अपने ख़ानदान के लोगों को जमा किया और उनसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज आ रही है तो तुम मानोगे? लोगों ने कहा मानेंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला। सादिक और अमीन का लक़ब अल्लाह के नबी को पहले दिन से मिल चुका था। लेकिन जब आपने कहा कि फिर मेरी सच्चाई पर इतना यकीन है तो लोगों कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मैं कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुफले हुन फलाह पा जाओगे। इस पे फिर आपको पत्थर भी पड़े और इस पे रिएक्शन शो हुआ। खानदान को दावत पे बुला कर खिला पिला कर ये पैगाम दिया तो लोग वहां से उठकर बातें करते हुए चले गए। वजह क्या थी? हसबुना मा वजदना अलैहि आबाना। आज कोई गैर मुस्लिम क्यों है? नाम ले लूं तो ले लूं, कोई बुरी बात नहीं है। यानी आज यहूदी यहूदी क्यों है? वो अपना दीन क्यों नहीं छोड़ता? आज ईसाई ईसाई क्यों है? और आज हिंदू हिंदू क्यों है? बुदा बुदा क्यों है? क्योंकि हसबुना मा वजदना अलैहि आबाना। तो शिर्क पे रहने की बहुत बड़ी वजह माँ बाप को जिस तरीके पे देखा। अगर मैं इस हसबुना को हसबुनल्लाह के साथ रिप्लेस करना चाहूँ, आयत पे नजर होगी आपकी भी। देखिए, मुसलमान कहता है हसबुनल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है, और हसबी अल्लाह भी कह सकता है वाहिद के सीगे में। बस ले लीजिए कि हसबुनल्लाह की बजाय हसबुना मा वजदना अलैहि आबाअना, ये है शिर्क की वन ऑफ बिगेस्ट रूट कॉज। चलिए उनको तो पीछे कीजिए, अल्लाह ने तो कह ही दिया कि क्या बाप दादा अगर इल्म नहीं रखते थे, यानी उन तक इल्म नहीं पहुंचा। आप जानते हैं कि आज इल्म जितना आसान हो गया कल ऐसे था। देखिए, लॉकडाउन के दिनों में आप ज्यादा इल्म ले रहे हैं आम दिनों की निस्बत। देने वाले दे रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं। क्या हमारे माँ बाप दादा और नानी नाना और उससे ऊपर के लोगों में इल्म इतना आसान था? कभी रहलतु फिल इल्म में आपको सुनाने लगू तो आप रो पड़े, आपकी कमरे सारी सीधी हो जाए जो थक जाती हैं 2-3 घंटे बैठने पे। इल्ला माशाल्लाह, कैसे मीलों के सफर किए इमाम बुखारी रहमहुल्ला, इमाम मुस्लिम, और किस किस को देखिए, कईयों की तो इल्म के रास्ते में जान ही चली गई। कितने मीलों का सफर पैदल करते थे। तो इल्म आम नहीं था। यानी अगर आज आप इसको गैर मुस्लिमों से अब हटाकर क्लोज सर्कट में आ जाइए, बड़े ही दर्द की बात है। हमने दुनिया से शिर्क तो क्या मिटाना था, काम तो यही था। सीधी सी बात है, वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की, ये दीन हक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको गालिब करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है मबूसियत था। हमें तो दुनिया में अल्लाह ने भेजा ही लोगों के लिए था, यदून इलल खैर था, कि लोगों को अल्लाह से जोड़ो। बेचारे अलग हो गए। देखिए, एक माँ से बच्चे को कोई जुदा कर दे और आप जरिया बन जाए उस माँ बच्चे की मुलाकात का, क्या वो माँ कभी आपका हक दे सकेगी? और वो बच्चा बड़ा होने तक कभी आपका ना शुक्रा होगा? क्या आपने मुझे मेरी माँ से मिला दिया था बचपन में? तो जब आप अल्लाह से बंदों को जोड़ते हैं तो वो बंदे भी फिर आपको कभी नहीं भूलते। सिर्फ बात यह है कि हम कोशिश नहीं करते, हमारे पास दलाइल नहीं होते, हम मरूबियत के साथ जीते, हम कहते हैं जो जिस पे है। तो ये तो बिल्कुल वही बात है कि घर किसी का हो और झंडा उस पे किसी और के नाम का लग जाए। आपके घर के बाहर आपकी नेम प्लेट है, एक मुल्क में उसी मुल्क का कानून और उसी का झंडा चलता है। तो आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके कवानीन को मानते हैं ना, और उसके सदर को आप सदर मानेंगे। आप ये नहीं कहते, नहीं, मैं इस शख्स को सदर नहीं मानता, मैं दूसरे को मानता हूँ, उसके वजीर आजम को आप वजीर आजम मानते हैं। सीधी सी बात है, मजबूर है, पसंद है कि नहीं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मानना उन्हीं को है। तो लिखिए, जिस तरह किसी मुल्क के कवानीन को मानना चाहिए वहां के हुक्मरानों और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनको मानना चाहिए। इसी तरह ये पूरी दुनिया ग्लोब अल्लाह का है। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ। एक बहुत बड़ी लॉजिक दे रही हूँ, इसको मिस ना करिएगा। अगर अक्ल से भी पूछें तो ये पूरी दुनिया अल्लाह की है, तो इस दुनिया में अल्लाह का नाम बड़ा होगा। अल्लाह के नाम का झंडा पूरी दुनिया में आए, ये एजेंडा है और इसी एजेंडे पे काम किया था रसूलों ने। और आज आपकी मेरी कोशिशें भी इसी पे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे को पूरे ग्लोब पे फैला दीजिए। ये दिन इस कायनात की सबसे ज्यादा खुशी और कामयाबी का दिन होगा। आप कह लीजिए कि ये तो अल्लाह तआला का वसफ है, ये तो अल्लाह सुबहान तआला की आला जरफी है कि वो बर्दाश्त करता है कुफर की हुकूमतों को। और इमाम इब्ने तैमिया रहमाहुल्ला फरमाया करते थे कि कुफर पे कोई हुकूमत कायम रह सकती है लेकिन जुल्म पे कायम नहीं रहेगी। आज आप देखिए बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, वो खुद को इवन अल्लाह के भी मुनकर कहते हैं लेकिन उनके मुल्कों में बहुत सुख है, चैन है, खैर है, क्योंकि इंसाफ है। लोग भाग भाग के उधर क्यों जाते हैं कि जी वहां अदल बहुत अच्छा है, तो अल्लाह का वसफ है, हम तो कभी किसी दूसरे को फटकने ना दे अपने पास। तो अल्लाह तआला ने मौका दिया हुआ है, भला क्यों दिया हुआ है ये भी समझ लीजिए, खुश हो जाएंगे कि आप इस सच्चे दीन को आम करते जाएं। एक वक्त आएगा कि उन मुल्कों की हुकूमतें मुसलमान होंगी, और वो कैसे होती हैं आइए जरा पारे की इब्तदाई आयत को देखेंगे, लेकिन बात तो बहुत लंबी हो सकती है। एक एक्टिविटी आप ले लीजिए मेरी तरफ से, आज के इस पूरे पारे को पढ़ते वक्त शीन रा काफ यानी शिर्क लफ्ज जिससे बनता है, इस मादे से यानी इस रूट से आने वाले लफ्जों को नोट कीजिएगा। कहीं ये मुशरिकून के तौर पे आएगा, कहीं भी युशरिकून पे आएगा, कहीं मुशरिक भी होगा। और शरीका तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। एक आखिरी बात ले लीजिए और उसको नोट करेंगे तो समझ आएगी, क्या शौहर अपनी बीवी में शरीका पसंद करता है? चाहे उसका कोई पसंदीदा दोस्ती क्यों ना हो कि तुम भी मेरी बीवी में शरीक हो जाओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर कोई बीवी कह दे कि आपकी भी बीवी हूं और साथ किसी और की भी हूं, वो मेरा मंगेतर था और वो मेरा कजन था, मैं उससे मोहब्बत करती थी, शादी तो उधर नहीं हुई, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको शौहर मानती हूँ, लेकिन जरा कभी कभी मुझे मौका दे दें कि मैं उसके साथ भी रहूं, मेरा अलग गैरत वाला होगा तो गन पॉइंट पे इस बात का फैसला ही कर देगा। क्या आप पसंद करती हैं कि आपका बच्चा किसी और माँ को ले आए, आपका शौहर एक और बीवी करना चाहे हलाल से भी, आप क्यों परेशान होती हैं? शरीका नहीं पसंद होता। और लफ्ज शरीके कितने बुरे हैं हमारे कल्चर में, ये तो आप जानते हैं। तो हम अपने लिए और अपनी औलादों के लिए तो शरीके पसंद ना करें, तो अल्लाह के लिए करें। तो वह माँ कदरुल्लाह हक का कदरी, अल्लाह ताला हमारा दिल खोल दे। और जब हम कुछ काम अपनी कोशिशों से नहीं कर पाते या नतायज हासिल नहीं कर पाते, तो फिर दुआ के लिए हाथ खड़े करने चाहिए। दुआ क्या है कि अल्लाह मैं अपनी कोशिशों से ये चीज़ करना तो चाह रही हूँ पर मेरे से हो नहीं रही, तो अब तू बाकी काम अपनी रहमत से मुझसे करा ले। ये है आज की दुआ। क्या जितने मुख्तलिफ गिरोह जो सिर्फ अल्लाह के साथ शिर्क करने या अल्लाह की तौहीद को मानने पर कायम हो गए, इसमें जो हक दीन है नंबर एक, अगर कोई गैर मुस्लिम ये मेरे जुमले सुन ले, आज से ये दुआ करे कि अल्लाह जो दीन जो मजहब सच्चा है तू मुझे उस तक पहुंचा दे। दिल खुलेगा? कई दफा दावत दी जाती है किसी गैर मुस्लिम को तो मैं उनको ये कहती हूँ एंड पे, ऐसी सफर में हल्की फुल्की जब बातें होती हैं गैर मुस्लिम से, तो मैं कहती हूँ डोंट वरी, डोंट लिसन टू मी, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड टॉक टू हिम, ओ गॉड गिव मी राइट पाथ। तो अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हें मिल जाएगा, मैं भी ये दुआ करूंगी अगर तुम्हारा दीन अच्छा है तो मुझे वो मिल जाएगा। तो लोगों को उनके जमीर की अदालत में खड़ा कर दें, लेकिन इसके रास्ते में रुकावटें क्या हैं नोट कीजिए। बहुत सारों को ये बात समझ आ गई थी मक्का में भी, लेकिन वो कहते थे नहीं। अबू जहल की एक मिसाल दे दूं तो सारी बातें समझ आ जाएंगी, जिसके लिए यानी अल्लाह के नबी के अल्फाज मौजूद हैं कि हर उम्मत का एक फिरौन है और मेरी उम्मत का फिरौन ये शख्स है। वो भी कहता था, उसका कौल मारूफ है, किताबों में आप पढ़ सकते हैं, कहता था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे हैं, मेरा दिल मानता है, लेकिन मैं क्यों नहीं इस्लाम कबूल करता, क्योंकि इसके बाद मुझे कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, मुझे पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, वही जो शरीयत की चीजें हैं जो तदरीजन मक्का के बाद मदीना के दौर में हुई थी, लेकिन पैगाम तो समझ आ गया था ना। कहने लगा अभी मैं पाबंदियां नहीं लगा सकता, अभी मेरे से नमाज रोजे हज नहीं होते, आज की जुबान की बात कर रही हूँ। और उसने सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल नहीं किया कि मुसलमान होने के बाद मेरी जिंदगी एक पाबंद जिंदगी होगी, मैं पूरी शरीयत पे अमल करने का मुकल्लफ हूँ, अधूरी पे नहीं। ये तो आज का मुसलमान है, अल्लाह मुझे और आपको माफ करे कि जो ये कहता, कोई बात नहीं हो ना मुसलमान, करो जो करना। वो फला वो तो आग में जाएगा, क्योंकि मुसलमान ही तुम यही काम करो, खाओ पियो अपनी जिंदगी में। और इस बारे में आपको हलाल हराम के भी बहुत इशारे मिलने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान का दिल पाक हो जाता है ना, फिर पेट भी पाक होगा, फिर जुबान भी पाक होगी, निगाह भी पाक होगी। तो बहरहाल जुरत उसमें ज्यादा थी कि जिसने अमल ना कर सकने के अंदेशे पे कलमा ही ना पढ़ा। आज हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, गैरों को एक साइड पे कर दीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए कि अगर आप और मैं मुसलमान घर में पैदा भी हो गए तो चौथी हुज्जत भी तमाम हो गई। इसके बावजूद आज देखिए, आयतों के साथ साथ इशारे करूंगी, और इस पे हमें एक और बारे में मजीद बात करने की जरूरत पड़ेगी कि जब मुसलमान में शिरक आ जाए, जब कलमा पढ़ने वाला कलमा गो शख्स मुशरिकाना काम करता है, तो फिर अल्लाह को कितना गुस्सा आता है, इसकी तस्वीर आज आपको अपने इर्द गिर्द दिखेगी। तो दुआ मांग लीजिए, ये तहज्जुद के वक्त मांगी हुई दुआओं में से एक दुआ थी अल्लाह के नबी की, सही मुस्लिम 770। अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व इसराफील فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اب یہاں سے سلسلہ دعا شروع ہوتی ہے، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دیکھیں بڑے بڑے فرشتوں کا نام ہے بیچ میں، یا اللہ पालने वाले जिब्राइल और मीकाइल और इसराफील के, और ये बड़े बड़े रहमत के फरिश्ते हैं, और इसराफील इनके और अल्लाह ताला के बीच में रसूल है। आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, जाहिर और पोशीदा के जानने वाले, तू अपने बंदों में फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ क्या है, हमारे ही दिन ठीक है, कोई बात नहीं। आज ये भी एक मसला है ना, पीछे बात हुई वहदत अधियान, काम अच्छे करो, दीन जो भी रखा है वही रखो। तो असल में अल्लाह ने तो दुनिया में भी बता दिया, लेकिन आखरत में सारी दुनिया देख लेगी कि कौन सा दीन सच्चा था। सीधी राह बता जिसमें लोग इख्तलाफ करते हैं अपने हुक्म से, बेशक तू ही जिसे चाहे सीधी राह बताता है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस दुआ को मांगने वाला बनाए, और अपने लिए भी मांगिए कि इवन आज हम मुसलमानों ने इस्लाम का नाम तो ले लिया, लेकिन फिर खाली मुस्लिम कौन कहलाता है। फिर आगे फिरके हैं, और कहीं जमातें हैं, और कहीं गिरोह हैं और अकायद हैं, किसी के एक फेवरेट बुजुर्ग हैं तो किसी के दूसरे हैं। तो इस दुआ को मांगा करें कि अल्लाह मुझे कुरान और सुन्नत पर ठुका दे। शख्सियात अपनी जगह, मुल्क और जगह अपनी जगह, लेकिन मैंने तो कल कब्र में मन रब्बु का मर रसूलु का मा दीनु का इसका जवाब देना। तो फिरका और मसलक और ख़ास तौर पर अकायद के जोफ के साथ नेकियां करना और दुनिया को दिखाना कि ये और वो, तो याद रखिए ये कबूलियत के रास्ते की रुकावटें हैं। इस सारे मौजू के बारे में एक हदीस ले लीजिए जो आज के इस बारे के साथ है, अबू दाऊद की रिवायत है 5116। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे जाहिलियत की नखवत और गुरूर को ख़त्म कर दिया और बाप दादा का नाम लेकर फख्र करने से रोक दिया। अब दो किस्म के लोग हैं, एक मुत्तकी और परहेजगार मोमिन, दूसरा बदबख्त फाजिर। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से पैदा हुए हैं, लोगों को अपनी कौमों पर फख्र करना छोड़ देना चाहिए। तो आबा परस्ती का रद है, अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों में सही रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दे। पारे की झलकियाँ लीजिएगा, हाइलाइट्स ऑफ पारा, यानी पारा नंबर 7 को सुनते वक्त आपने क्या जहन में रखना है कि हम इस बारे में क्या क्या सीखेंगे। पहली बात, नेक लोगों की जमात में शामिल होकर अल्लाह का गवाह बनना, हलाल और हराम की पाबंदी के साथ जीना, अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, अल्लाह से डरकर रहना, अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करना, जमीन में अल्लाह ताला की निशानियां देखने के लिए चलना फिरना, अपने रब के सामने खड़े होने को याद रखना, हक के रास्ते पर जमे रहना, वही की पैरवी करना, अल्लाह की रजा की तलब में रहना, दलीले रोशन पर कायम होना, अल्लाह ताला को आजजी से और चुपके चुपके पुकारना, और यकसू होकर अपना रुख अल्लाह की तरफ रखना, राह हिदायत पर चलना, अल्लाह की कदर पहचानने का हक अदा करना। वमा कदरुल्लाह हक का कदरी, बहुत बड़ी वजह है शिर्क की। इल्म हासिल करना, समझ बूझ से काम लेना और ईमान लाना, और फिर आखिर में वही की पैरवी करना। अल्लाह ताला हमें ये सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करने की तौफीक दे पारे का तर्जमा सुनने के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरत मायदा की आयत नंबर 83 से पारा शुरू होता है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व इज़ा समियू मा उन्ज़िरा इलर रसूल आयुनहुम तफीदु मिनद दमई मिम्मा रफू मिनल हक यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन वमा लना ला नूमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ ہائی لائٹ کیجئے، معرفت الہی مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کے برعکس، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ حبشہ، جو مکہ اور مدینہ سے بہت دور فاصلے پہ ایک ملک تھا، اپنے دور کی سپر پاور تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے حالات تنگ ہو گئے تو کچھ لوگوں کو اجازت دی کہ آپ حبشہ ہجرت کر جائیے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ ہے تو عیسائی لیکن عدل پسند ہے۔ لہٰذا لوگ گئے، اور آپ کے ساتھی جہاں جاتے تھے وہاں سو نہیں جاتے تھے، وہاں جا کر اپنی سروائیول کی فکر نہیں کرتے تھے کہ بچوں کو اسکول کون سے دیں، جاب کیا کرے، گھر کیسا لیں، فرنیچر کیا۔ ہم تو کہیں چلے بھی جائیں اگر دنیا میں کسی وجہ سے، تو اپنی ہی سروائیول کی فکر ہے۔ صحابہ کرام کے خون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد پیدا کر دیا تھا کہ دنیا کے جس خطے پہ جاؤ گے، جہاں تمہاری مہریں لگیں گی، کل تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہاں ایک واقعہ جو ہوا تھا، آپ اس کی تفصیلات حدیث سے پڑھ سکتے ہیں، کہ نجاشی نے پیغام سنا جب سورت مریم کی ہی آیتیں تھیں صرف، اور اس میں حضرت عیسیٰ کی حقیقت کھلی تھی، تو اسی وقت اس نے کلمہ قبول کیا، اور بعد میں پھر اس کی طرف سے 70 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں بھیجے گئے تھے۔ یہاں ان کا تذکرہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کال کے اوپر اللہ نے جنتوں کے وعدے کر دیے، ہم تو کہتے ہیں عمل سے جنت ملے گی۔ تو جب آپ لکھ لیجئے کہ یہ کال نہیں تھا، یہ ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ جب انسان آبا پرستی کے سحر سے نکلتا ہے، تعصب سے دور ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کی دعوت اتنی سچی، کلوز ٹو فطرہ ہے، کہ پھر وہ ساری جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کے یہ کلمہ پہلے دل سے مانتا ہے، اور پھر زبان پہ یہ کلمہ آتا ہے، اور پھر ساری زندگی عمل بالجوارح کی صورت میں یہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ جتنی آسانی سے حبشہ سے آئے ہوئے لوگ اسلام کو مان گئے، اللہ تعالیٰ آج ان لوگوں کے بھی دل کھول دیں کہ جن تک دعوت پہنچی، اور پھر اس کے بعد دل بھی مان رہا ہے، لیکن صرف لوگوں کے خوف کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ نہیں پا رہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معرفت حق ہی اصل میں اسلام کی طرف آنا ہے۔ اس کے بعد اب کچھ چیزوں کی بات جس کے اوپر غور و فکر بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما حل اللہ لکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں، ان کو حرام مت کرو، اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں، ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کھانا پینا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کے دل سے۔ حلال اور حرام طیبات کی یہاں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جب آپ شرک کی گندگیوں سے پاک ہوں گے نا، تو آپ پیٹ میں جانے والی چیزوں کا بھی خیال کریں گے۔ ذرا سا سمجھیے گا، آپ دیکھیے کہ پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ، ہم پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، تب یہاں ایک فلسفہ اور سمجھ لیجئے کہ جب زبان پہ طیب کلمہ آ جاتا ہے نا، تو انسان حلال اور حرام کانشس ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ کھاتے ہوئے بھی سوچتا ہے کیا کھا رہی ہوں، وہ کچھ بولتے ہوئے بھی سوچتا ہے، وہ کچھ پہنتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میں غلط تو نہیں کر رہی۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ چیز کتنی کامن ہے कि मुसलमान क्या खाए, ये मुस्लिम फूड है ये नहीं है, ये हलाल है ये ज़बीहा है, यहाँ यही असूल है कि एक मुसलमान एक ईमान वाला कहता है कि मैं वो चीज़ क्यों खाऊं जिसको खाने के बाद मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी, मैं वो क्यों खाऊं जिसके बाद मेरी इबादतें कबूल नहीं होंगी, जिसके बाद मेरी औलाद नाफरमान हो जाएगी, मैं वो क्यों पहनूं जिसको पहनने के बाद मैं परेशान हो जाऊंगी। तो ज़रूरत इस बात की कि ज़िंदगी में हलाल और हराम का ख्याल रखा जाए, और एक मुसलमान इसका बहुत ख्याल रखता है। खाने पीने की चीज़ों में चूंकि हलाल बात कर दी गई, तो ज़बीहा से लेकर बाकी चीज़ें जो हमने पिछली सूरत में भी पढ़ ली, आप देखिए कि उन सब में जो गलत चीज़ थी अल्लाह ने उसको निकाल दिया। इस्लामिकली ज़िबा करते हैं आप तो जिस्म का गंदा खून निकल जाता है जानवर का, पाक खाइए। ये मुस्लिम ज़बीहा गैर मुस्लिम ज़बीहा की हद क्या है कि मुस्लिम ज़बीहा इस तरीके से किया कि जिसमें जानवर की गंदगी निकल गई, और आप एक जस्त में झटके की सूरत में जानवर की गर्दन काट दे और वो सारा गंदा खून जिस्म में रह गया। शराब हलाल है? शराब तैयब है कि ना तैयब है? तो आप खुद देखेंगे कि हर वो चीज़ जिससे नसब बदल जाए, जिना क्यों हराम है? क्योंकि ये तैयब नहीं है। तो हर चीज़ को पढ़ते सुनते वक्त आपने मैंने इस चीज़ को लेना है। इंशाल्लाह इस बारे में हम थोड़ी थोड़ी इस पे बात करते रहेंगे। इस वक्त सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पे रखिए, बी केयरफुल जो आप खा रहे हैं, क्योंकि आपके खाने से आपकी इबादत भी मुतासर होंगी और आपकी दूसरी ज़िंदगी के मामलात भी दिखेंगे। एक हदीस में आता है कि इबादत करता है एक शख्स बहुत ज़्यादा, तो इबलीस उसके बारे में कहता है जो देख कर आओ कि इसका माल हलाल का। जब कोई उसका करिंदा जाकर देखता है और कहता है कि ना ना इसका माल तो हराम का है, और हराम दो ही तरह से होता है, एक फी नफसी ही हराम मतलब है ही चीज़ गंदी, मसलन पिक का गोश्त खाता है कोई, और दूसरी यह है कि उसका जरिया आमदनी हराम है जिसमें नाफरमानी है। तो जब वो इन दो में से कोई एक चीज़ देखता है आके उसको बताता है कि नहीं नहीं खाना इसका हराम का है, तो इबलीस क्या कहता है, अब इसको छोड़ दो, थकता रहे हलकान होता रहे क्योंकि इसकी बातें कबूल नहीं होनी। और इंसान खाना काबा में पहुंच जाता है, अहराम बांध कर जाता है और दुआएं मांगता है, लेकिन आसमान से आवाज़ आती है ला लब्बैक, तेरा लब्बैक भी कबूल नहीं और तेरा सादैक भी कबूल नहीं, क्योंकि तेरे पेट में जो गजा है वो हराम की है और तेरा कपड़ा हराम का। तो लिहाजा लिख लीजिए, शिर्क का फितना हलाल और हराम के फर्क को मिटाने की सूरत में आपको आज गली गली मुल्क मुल्क घर घर नजर आएगा। अल्लाह ताला हमारे पेट के अंदर जो लुक्मे जाते हैं उसकी हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर एक जुबान के हराम की बात है और वो है लफ कस्में। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों में लफ कसम पर तुमसे मुआवजा नहीं फरमाता, लेकिन इसकी पकड़ तो इस बात पर होगी, यानी मुआवजा इस पर फरमाता है कि तुम जिन कस्मों को मजबूत करो इसका कफारा 10 मोहताजों को खाना देना है, औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़े देना, या एक गुलाम या लौंडी को आज़ाद कराना, और जिसको इसकी ताकत यानी मकदूर ना हो तो 3 दिन रोजे हैं। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है, जबकि तुम कसम खा लो और अपनी कस्मों का ख्याल रखो, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। तो नोट कीजिए, कसम तोड़ने का कफारा, अव्वल तो कसम खानी नहीं चाहिए, दूसरी बात है अगर खा ली तो सिर्फ अल्लाह के नाम की खाइए, तीसरी बात है कि सिर्फ सच्ची कसम खाइए, यानी आप किसी काम को सोच रहे थे कि मैं कर लूंगा, कसम खा ली, झूठी कसम नहीं खानी, गैर अल्लाह के नाम की कसम नहीं खानी। अब कसम खा ली सही सारी शराइत के साथ, आप पूरी नहीं कर पा रहे, मतलब कसम खा लेते हैं ऐसी जोश में गुस्से में आके, अल्लाह की कसम मैं अपने भाई के घर कभी नहीं जाऊंगी, नहीं खानी चाहिए ऐसी कसम, लेकिन खा ली, अब क्या करें, तोड़िए इसको, फौरन तोड़ दीजिए। तोड़ने के तरीके क्या हैं, 10 मिसकीनों का खाना या कपड़े, एक गुलाम को आज़ाद करना और 3 दिन के रोजे। तो क्या पता चला कि अपनी जुबान से सोच कर बोलो। यहां तक आप देखिए कि 83 से 89 तक जो हमने आयात पढ़ ली, इसमें हमने क्या कुछ देखा, हक को पहचान लेने वालों की क्या कैफियत हो जाती है, और आंखें आंसुओं से बह निकलना इस बात की दलील है कि हक को पहचान गए। अपने लिए क्राइटेरियन लिखिए, आज ये हक यानी कुरान पढ़ते वक्त मेरी भी आंखों में आंसू आते हैं। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो फिल्में देखते हुए तो रोएं और कुरान पढ़ते हुए बोर होने लगे, नींद आने लगे, तरावी में पढ़ें तो एक पांव पे खड़े हैं तो दूसरे पे नहीं, अल्लाह ना करे कि हमारे दिलों की ये कैफियत हो। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की हलाल करता को हराम करने की ममानियत देख ली। हक को पहचानने वालों का अजर क्या है कि सिर्फ कौल से ही, कलमा पढ़ते ही अगर मौत आ जाए, एक ने की ना की हो तो जन्नत मिल जाएगी। फिर फरमाया अल्लाह की नाफरमानी से बचो। इसी तरह हक को झुटलाने वालों का अंजाम क्या होता है, वो देखा और फिर कस्मों की ममानियत कि ऐसी कस्में खाओ ही ना कि जिसको बाद में पूरी ना कर सको। अल्लाह ताला हमें अपने पे बोले हुए लफ्ज़ों की भी और इसके अलावा कहेवों की भी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं आयत नंबर 90। या युहल्लज़ीना मनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पान से सब गंदी बातें शैतानी काम है, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह याब हो जाओ। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बुगस वाक़े करा दे और अल्लाह की याद से और तमाश से तुम्हें रोके रखे। सो अब भी बाज आ जाओ। शराब की हुरमत का कतई हुक्म। मुख्तलिफ मराहल में शराब को हराम किया गया ताकि इंसान यूज टू भी हो ले और उनका इकोनॉमिकल डिसऑर्डर भी ना हो। तदरीजन ऐसी चीज़ों को छेड़ना चाहिए लोगों के अंदर जिसके वो यूज टू हों। और यहाँ ये बताकर कि शराब जहाँ होगी वहाँ जुआ भी होगा, शराब और हमर और मैसर। और साथ ही साथ ये है कि शराब पीकर सदका बहुत करते थे मक्काले। जिस माशरे में युकम उतर आता था वहाँ तो घर घर में शराब ऐसे पी जाती थी जैसे आज ड्रिंक्स पिए जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि शराब का दुनियावी नुकसान भी होगा और वो क्या है, आपस में अदावत और दुश्मनी आएंगी और बुगस होगा क्योंकि नशे में धुत शख्स को तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, वो कुछ भी बोल दे। अब दूसरा तो नशे में नहीं है, मसलन शौहर शराब पीकर बीवी को गालियां दे दे, तलाक बोल दे, तो क्या बीवी के दिल में उसकी वो इज्जत और कदर रहेगी? फिर इसी तरह शराब का दीनी नुकसान भी है और वो है अल्लाह की याद और नमाज से गफलत। इसको उम्मुल खबाइस कहा गया, शैतानी काम कहा गया। तो इस शराब के बारे में हमारे असलाफ के अकवाल सिर्फ जमा कर लेना आप, अहादीस तो हैं, कुरान की आयतें तो जो हम पढ़ ही रहे हैं, यकीन करें इसको हाथ न लगाएं। लेकिन क्या आज लोग जमजम के बारे में वो बातें कहते हैं जो आज शराब की मोहब्बत में शेर और गजलें और गाने? अल्लाह की पनाह, जहां शिर्क होगा वहां बाकी चीजें भी होंगी और जहां शराब होगी वहां जुआ भी होगा। ये भाई बहन कहलाते हैं क्योंकि एक बुराई के बाद दूसरी बुराई चलती है। फिर इसी तरह से आप देखिए अनसाब और अजलाम, ये फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीजें इकट्ठी होंगी। और आप देखिए कि अल्लाह असल में मुसलमानों को वॉर्न करता है कि तुम तो ये काम ना करो, ये तो वहां होंगे जहां शिर्क होगा। जो अल्लाह की बात पूरी ना माने वो तो फिर नफ्स की तो मानेंगे। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहिए कि जो इंसान के लिए फितने का जरिया बने। फरमाया, तुम अल्लाह की इताअत करते रहो और रसूल की इताअत करते रहो और एहतियात रखो। अगर एराज करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के जिम्मे साफ साफ पहुंचा देना है। क्या पता चला कि हाथ पकड़ के तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुमने अपने शऊर से इन चीजों को देखना है। फालमु अन्नमा रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो इब्लाग करना है चाहे फिर कोई माने कि ना माने। इसके बरक्स कुछ अच्छे भी लोग हैं जो यूज टू थे, जिनकी गुट्टी में पड़ी थी लेकिन उनको छोड़नी पड़ी। आप देखिए कि ये आयत जो अभी पढ़ने वाली है आपके सामने 93, ये बहुत खूबसूरत आयत है। किस रंग में? कि गुनाह के आदी थे, अब अल्लाह का हुक्म समझकर उसको छोड़ने लगे। मसलन लोग शराब पीते थे, जायज थी जी पीते थे क्योंकि हराम नहीं थी, अब हराम हो गई। जिस दिन ये आयत उतरती है मदीना की गलियों में शराब के मटके फोड़े गए और कई दिन तक उसकी गलियों में से सड़ांद आती थी। कहते हैं कि अगले साल जब बारिश हुई दोबारा मट्टी गीली हुई तो फिर बू आने लगी, हाथों में पकड़े हुए जाम टूटे। ये है असल में इम्प्लीमेंटेशन का तरीका कि लोगों के दिलों को यकीन आ जाए कि ये चीज अच्छी नहीं। साहबा ने कभी सवाल नहीं किए थे हराम है, लफ्ज दिखाइए कहाँ है जी, और ये तो फलां है, नाम बदल दिए। हदीस में आता है कि लोग शराब का नाम बदल कर पियेंगे क्यामत के करीब। आज आप देख लीजिए, दुख की बात है कि जब मुसलमान इसके मुर्तकिब होने लगे तो अब ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है किसी भी गुनाह को छोड़ने का। और खास तौर पे यहाँ ऐसी कोई लत पड़ चुकी तो ऐसे लोगों को तसल्ली दिलाइए, आप उनका हाथ थामिए। क्योंकि लैसा अल्लज़ीना, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था इस पर इनकी कोई पकड़ ना होगी, कोई गिरफ्त ना होगी। ये अल्लाह की रहमत जिसका जिक्र आज किस बारे में आगे जाकर आएगा, बशर्ते कि वो आइंदा इन चीजों से बचे रहें जो हराम की गई हैं और ईमान पर साबित कदम रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस जिस चीज से रोका जाए इससे रुके और जो फरमाने इलाही हो इसे माने। फिर अल्लाह से سے ڈرنے والے کے ساتھ یعنی پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھے. اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے. کیا پتہ چلا, لوگوں کو رخصت دیجئے, سہولت دیجئے. بعض جب ہم بہت سختی کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے راستے کھلے ہیں. آج بھی اگر کوئی ایسی چیز میں مبتلا ہے, خود کو بے بس پاتا ہے, تو ایک ایک قدم تو لے. آپ دیکھیے, بچے کو اب ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھائیں, اسی طرح گناہوں کے نشوں میں ڈوبے ہوں کو بھی ہاتھ پکڑ کے لانا پڑتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کسی کا ساتھی اس کا شکار ہو, یعنی شوہر ہے تو اس کی بیوی ایسی کسی چیز کی عادی ہو چکی اپنی غلط دوستوں کے سحر میں آ کر, اور یا پھر بیوی کا شوہر ایسا ہو چکا, تو اس کے لیے کریں کیا؟ حکمت سے بات کریں. ہمارے پاس ایک بک ہے نیکی کے سفیر, وہ ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت گائیڈ لائن ہے کہ جن کے ساتھ والے کسی نہ کسی برائی کا شکار ہو گئے اور کیسے ان کو ہدایت کی طرف لانا ہے. یہ سوال اس لیے بول رہی ہوں کہ بہت ساری بہنوں کے میرے پاس کوسچن جو آتے ہیں اس میں یہی موضوع ہوتا ہے کہ شوہر میں یہ خرابی آ گئی, ماحول کا اثر ہوا, یہ ہوا. تو پھر میں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ جا کر اس کی پہلی سٹوری پڑھ لیجئے. سٹوریز ہیں, بہت ہی لائٹ وے میں لکھی ہوئی بک ہے وہ. تو بہرحال اس کے بعد فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی کا ساتھی اگر کسی بری چیز میں انڈلج ہو چکا ہو, تب ایک دم اس کے ساتھ آپ ایسا سخت رویہ کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور اس میں ہم نے تقویٰ کے تین مختلف درجے بھی دیکھے, اور یہی ہے اصل میں گناہوں کی زندگی کو نیکیوں کی زندگی میں ڈھالنے کا طریقہ. قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. آپ میں بچپن سے یہ محاورہ سنتے آئے, بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ تقویٰ بھی قطرہ قطرہ کر کے جمع کیا جاتا ہے. تو دیکھیے گا ذرا اس کو کہ تقویٰ کیسے آتا ہے. آپ دیکھیے, سب سے نیچے سے اگر آپ دیکھیں تو مومن فرائض کی پابندی کرے گا. آپ کو مجھے بھی یہی حکم ہے. آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا ہے جو اب بالکل ہی دین سے نکل چکا ہے, تو اس کو پہلے فرائض کی عادت ڈالیے. نہ اس کو لمبی چوڑی نماز کی دعوت دیجئے, اور 17 رکعت نہیں پڑھی تو پھر پڑھو ہی نہ, یہ نہ کیجئے. فرائض کی عادت کیجئے آہستہ آہستہ, پھر ہوتے ہوتے وہ اور سے اور آگے جائے گا, پھر سنتیں نوافل اس کی زندگی میں آئیں گے. تو انسان پہلے مومن بنتا ہے فرائض کو پابندی سے ادا کر کے, پھر اس کے بعد متقی بنتا ہے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے والا. تو پہلے نیکیوں کی رغبت دلائیے, پھر گناہوں کو چھوڑنے کا مشورہ دیجئے, اور کرتے کرتے یوز ٹو ہوتے ہوتے آخر میں محسن کے درجے پہ فائز ہوتا ہے. فرائض کی پابندی, گناہوں سے بچنا اور احسان کا معاملہ کرنا, تو پھر زندگی میں نیکیوں کا حسن آنے ہی لگتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے, اور جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو, وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو, اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے, جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں, خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے, یا خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے, اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے, اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا. یہ نوٹ کیجئے گا. اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. شکار عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا, تو آزمائش اسی چیز پہ آتی ہے جو ویک پوائنٹ ہے. اللہ نے احرام کی حالت میں شکار کو منع کر دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایک انسان اللہ کے حکم کو زیادہ جگہ دیتا ہے یا اپنے نفس کو. تو شرک کی قسموں میں ایک یہ بھی ہے, شرک فی الحکم, اللہ کا حکم کچھ اور ہو اور بندہ معاشرے کا یا اپنے نفس کا حکم مانتا رہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے. اگلی آیت نوٹ کر لیجئے, سی فوڈ کے حلال ہونے کی دلیل قرآن پاک میں کدھر ہے؟ تو لکھ لیجئے سورت مائدہ 96, اوہل لکم السید البحر وطعمہ, تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے, اور مسافروں کے واسطے, اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. یہ واپسی کا احساس اور جا کر پھر رپورٹ دینے کا احساس بندے کو سیدھا کرتا. 3 سیکنڈ غور کیجئے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, کیا ہوگا اس دن. जब हदों को तोड़ा होगा, क्या होगा अगर शिर्क के साथ जिंदगी गुजर गई। अल्लाह ताला बचा के रखे। अल्लाह ने काबा को, जो कि अदब का मकान है, लोगों के कायम रहने का सबब करार दिया, और इज्जत वाले महीने को भी, और हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर को भी, और इन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे पड़े हों। ये इसलिए कि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह ताला तमाम आसमानों और जमीन के अंदर की सब चीजों का इल्म रखने वाला है, और बेशक अल्लाह ताला सब चीजों को खूब जानता है। कुर्बानी के जानवरों के लिए कुछ यहाँ हिदायत हैं। फिर फरमाया, ये आयत आपके मेरे लिए काबिले गौर है। एलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तुम यकीन जानो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला भी है, और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत और बड़ी रहमत वाला भी है। अल्लाह ताला की रहमत सिफत सूरत अल फातिहा में भी आई थी, अर रहमान अर रहीम। अक़ल तो कहती है कि रहमानियत और रहीमियत की सिफत के बाद अल्लाह की पकड़ का जिक्र आना चाहिए था, यानी जुन्तकाम और पकड़ने वाला, लेकिन जुलेकाब वो नहीं आया। वहां क्या आया था? मालिक यौमिद्दीन। जुमला वहां भी बोला था कि अल्लाह ने यहां अपनी शान रहीमियत के मुकाबले पे अदल की सिफत रखी है, इंतकाम की नहीं। यहां देख लीजिए, इंतकाम की बात आ गई। यानी अल्लाह ताला अपनी जात से इंसान से मोहब्बत करता है, लेकिन जब बंदा अल्लाह की नहीं मानता तो फिर उसको परवाह नहीं। शिर्क के टॉपिक पे रखकर इसको देखे तो हो सकता है कि हाथ ठंडे हो जाएं। अल्लाह ताला को सारी जिंदगी ना मानने वाले, अल्लाह चाहे तो दुनिया में उस जुबान को पत्थर की करते जिससे शिर्किया लफ्ज निकले, अल्लाह उस सर को कभी उठने ही ना दे और मुर्गा बना दे उसको जो किसी गैर के आगे सजदा करे, उस माथे को अल्लाह ताला कभी उठने ना दे जो किसी के आगे टिक गया, लेकिन अल्लाह नहीं देता। रिलैक्स रिसो के कर लो जो करना है, हमारी तरह अल्लाह गुस्से में थोड़ी आता है, लेकिन आखिरत में अंजाम बड़ा बुरा है। अल्लाह ताला बचा के रखे। इसीलिए रसूल तड़पते थे, अल्लाह दुनिया में कोई एक शिर्क पे ना रहे, अल्लाह कोई एक इस्लाम की अम्ब्रेला के बाहर ना रहे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मालर रसूल इल्लल बलाग। रसूल के जिम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह ताला सब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। तो आपने मैंने ही बलाग करना है, बल्लिगन्नी वलऊ आया। आप कहते कौन सा इसने मानना? आपके घरों में कुछ मेड्स होती हैं जो शिर्क की मुर्तकिब हो सकती हैं, जो इस्लाम की छत में नहीं है। अपने कौल फेल और अमल और दलील के साथ उनको कहते रहिए, अल्लाह ताला दिल खोलने पे कादिर है। तो हमने आयत 92 से 99 में जो उनवानात देखे, जो टॉपिक्स देखे, जरा उसको दोहरा लीजिए। अल्लाह ताला कुछ चीज़ों से रोक के आजमाइश करता, जैसे अहराम की हालत में शिकार से रोक दिया गया अरबों को, इसी तरह अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज करने पर दर्दनाक सजा मिलेगी, और इसी तरह तौबा करने के बाद इस पर साबित कदम रहिए, कोशिश करें फिर चले। लोग कहते हैं हम नियत करते हैं ये नहीं करना, फिर करते हैं, फिर कर लीजिए नियत, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ताला तो बहुत रहम फरमाता है। लेकिन ये कहना कि नहीं जी फिर बार बार ऐसा नहीं, तो ऐसा ना कीजिए। साबित कदमी आ जाएगी, खेलते रहिए, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपको शऊर देगा, बड़े हो जाएंगे और फिर वो गुना बार बार नहीं होगा, और फिर नेक रवैया नेक किरदार लोग अल्लाह को पसंद है। अब दोबारा देखिए कि शिर्क का एक अमली इजहार होता है कि पाक और नापाक का फर्क मिट जाता है। तो आयत 100 बहुत अहम है, इसके ऊपर गौर करेंगे। कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यिब। आप फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं, गो आपको नापाक की कसरत भली लगती हो। अल्लाह ताला से डरते रहो ऐ अक्लमंदो, ताकि तुम कामयाब हो। जी, यहाँ एक असूल नोट करते हैं, और वो कि कोई चीज है बहुत ज्यादा लेकिन है खबीस, पाक नहीं है, इसके मुकाबले में है थोड़ी लेकिन है पाक। बस आज लोग कहते हैं हलाल में कहाँ बुरी पड़ती है। लो जी, अब गैर रिश्वत के कोई आज बच्चे पाल सकता है, ये मिसाल। या अब क्या हम सिर्फ बस अब मुस्लिम स्टोर्स पे ही जाएं, और ये कितने रेस्टोरेंट हैं यहाँ इस मुस्लिम फूड के, तो चलो फिर रेगुलर स्टोर्स में जाते हैं और फलां 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 जो चेन्स चलती हैं उन पे जाते हैं। तो यहाँ एक असूल समझिए, यहाँ बात तो बाजाहर खाने पीने की है, लेकिन असूल में जो बहुत बड़ी बात है वो कसरतुल खबीस है। याद रखिए कि दुनिया में खबीस चीज़ें, और कह लीजिए कि खबीस खुबस है, तैयब का अपोजिट, तैयब पाक है तो खबीस नापाक है। दुनिया में अमूमन नापाक चीज़ें मशहूर होती हैं। आज भी देखिए, गुनाह के काम, न्यूडिटी के काम, सेक्सुअल थिंग्स दुनिया में आम है, इसके बरक्स नेकी क्या है आज? रिवाज ही नहीं, आपको मीडिया पे, नेट पे ज्यादा दीनी मालूमात मिलती हैं या कुछ और? आप सोशल मीडिया पे जाइए तो आपकी निगाहें गंद ज्यादा देख सकती हैं या खैर? ये तो अल्लाह का एहसान है कि आज अल्लाह ने मुस्लिम्स को ये ब्रेन दे दिया कि वो इन चीजों पे भी पहुंच गए और इस्लाम की बातें आने लगी। कहाँ आती थी आज से पहले? कभी किसी सिनेमा घर में आपने किसी का दर्द सुना था जाके? तो क्या पता चला कि आज नेकी करना अक्सरियत का मिजाज नहीं रहा। और आज आप देख लीजिए कि चारों तरफ बुराई का एक ऐसा हंगामा है कि कभी कभी दिल बंद होने लगता है। हमारे अपने मुस्लिम बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस की एक्टिविटीज को जाकर देख लीजिए। यकीन कीजिए कि आज आपके मुसलमान मुल्कों के कॉलेजों की बच्चियां वो ड्रेसेस पहनती हैं जो शायद कभी आपने जिंदगी में कोई मूवी देखी हो तो वो इंग्लिश मूवीज में तो कोई पहन सकता था, वो इंडियन मूवीज में भी नहीं पहनते थे लोग, और इल्ला माशाल्लाह कहीं और। हम किधर जा रहे हैं? आज जिस तेजी से हमारी नस्लों को तालीम के नाम पे दीन से दूर किया जा रहा है, सिर्फ इसके चंद मंजर किसी यूनिवर्सिटी और किसी मेडिकल कॉलेज का जाके लॉन्च देख लीजिए। क्या वहां लव स्टोरियां चलती हैं और क्या बच्चियों के ड्रेस हैं कि आपका एक समझदार 17-18 साल का बच्चा ऐसी बच्ची से अपनी नजरों को पाक रख सकता है? वेस्ट में रहने वालों की तो हम बात ही नहीं करते, हमें तो इस वक्त अपनी फिक्र लगी हुई है। तो चेक कीजिए क्यों कसरत पे चले गए? हम कहते हैं सब कर रहे हैं, तुम भी कर लो, सब खा रहे हैं आप भी खा लीजिए। आज कितना मुश्किल है हलाल खाना ढूंढना, इंग्रेडिएंट्स पढ़ पढ़ के लेने पड़ते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। तो हमेशा अपने लिए कहते हैं ना, बी वॉचफुल अबाउट योर स्टेप्स। सीढ़ियों के पास अमूमन ये लिखा होता है कि आगे एक्सकलेटर आ रहा है तो जरा नोट कर लीजिएगा। तो आपको मुझे भी इस चीज की फिक्र करनी है। आप देखते क्या ज्यादा है? आप सुनते क्या ज्यादा है? आपकी चिटचिट क्या है? एक एक चीज पे आप इस असूल को लगा लीजिए। अल्लाह ने आपको मुझे हलाल की दावत दी है, और याद रखिए कि खाने के साथ भी तकवा की बातें, हलाल हराम के साथ भी तकवा की बातें, क्योंकि हकीकी ईमान तकवा का तकाजा है। और किसी को आप कीचड़ भरा पानी दे दें बाल्टी भर के और उसके मुकाबले में एक छोटा ग्लास जमजम का, कौन सा बेहतर है? तो याद रखिए मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी। आज का ये भी एक फितना है, सब कर रहे हैं तुम भी कर लो। अच्छा ये तभी तो इतने लोग कर रहे हैं, कितने लोग उनको सुनते हैं? देखो ना, अच्छे ही हैं तभी तो सुनते हैं ना। तो याद रखिए ये बातें करके सहर में ना आइएगा, और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी से खबीस को निकाल कर तैयब पे ले आए। ताल्लुकात को हलाल रखिए, शौहर बीवी एक दूसरे के लिए तैयब हैं। इसके बरक्स सारी दोस्तियां और सारी चीजें एक तरफ कर दीजिए, आप देखेंगे कि इससे फायदा होगा। और जितना जिंदगी में हलाल आएगा ना, उतनी जुबान पाक होगी, उतने अमल कबूल होंगे, उतना दिल साफ रहेगा, दुआएं कबूल होंगी, उम्र में बरकत आएगी, दुनिया में सादत मिलेगी, माल के अंदर बरकत होगी, और पाक कमाई से पाली हुई औलाद तैयब होती है। हराम खाने पेट में हो तो औलादें नाफरमान हो जाती हैं, सारी जिंदगी माल कमाते हैं, कहते इतनी जायदादें छोड़ गए, ये कसरत है। लेकिन अगर विरासत में हराम माल छोड़ दिया, लिख लीजिए वो जहन्नुम की ज्यादे राख बनेगी। आप 10 घर छोड़ गए और 10 के ऊपर कर्ज भी, और वो भी सूद का है, आपके लिए कब्र में जाती जवाबदेही होगी। बच्चे तो बाद में जो कर रहे हैं वो तो आपको भी नहीं पता कि आज क्या होगा। तो हमेशा अपना मिजाज तैयब रखिए, और याद रखिए कि ये अल्लाह की सुन्नत है। जितना अंदर तकवा है, जितना ईमान है, तो अल्लाह आपको रोक लेता है। आपके पेट में हराम जाता ही नहीं है, वॉमिट हो जाएगा, मुंह में नहीं जाएगा, आपको अंदर से महसूस होगा। एक बहुत प्यारा वाक्य अल्लाह के नबी का आपने भी सुना होगा कि एक दफा आप कहीं गए तो आपको खाना पेश किया गया, तो आप खाना खाया लेकिन मुंह में लुकमा रख के आगे नहीं डाल रहे, सिर्फ मुंह में ही घुमा रहे हैं। बाद में पूछा ये कहाँ से आया? आपने कहा ये गोश्त उस बकरी से लिया गया जिसको उसके मालिक की मर्जी के बगैर हासिल हुआ। जब पूरी तहकीक कराई गई तो वाकई वो गोश्त जिन्होंने भेजा था, उसने कहा कि मैंने उधर भी भेजा उधर भी भेजा, लेकिन ना बात बनी। तो मैंने अपने हमसाये की बीवी से कहा कि मुझे गोश्त दे दो, तो उसका शोहर घर पे नहीं था, उसने अपने शोहर से पूछे बगैर मुझे ये बकरी जिबा कर दी। तो ये बात है, यानी वो बकरी थी ठीक, लेकिन बीवी ने शोहर की इजाजत के बगैर दी, तो आपने कहा कि जाओ इसका गोश्त कैदियों को खिला दो। आप देखिए इमाम बुखारी जैसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं। वफात के वक्त इमाम बुखारी के वालिद कहते हैं कि मैं अपने माल में एक दिरहम भी शुबे वाला नहीं पाता। तो लिख लीजिए फितरते सलीमा वाले सिर्फ पाकीजा को पसंद करते हैं। अपने और हराम के बीच में हलाल को आड़ बनाओ ताकि निगाह उधर जाए ना। क्या जरूरत है ज्यादा लेने की? यकीन कीजिए 20,000 में वो बरकत नहीं होगी जो 2,000 में होगी। तो इसको रिश्वत पे भी ले आइए, इसको सूद पे भी ले आइए, इसको जिंदगी के हर मामले पे ले आए, क्योंकि हलाल खाने से इबादत और इताअत आसान होती है। कई जगह मैं देखती हूँ कि कुछ लोग इतने स्टबन के, क्यों नहीं आ रहे नेकी की तरफ, क्यों नहीं तौफीक हो रही, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ का होगा, या गलत देखने लग गए, या सुनने लग गए, या बोलने लग गए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ऐसी चीजों से बचाए कि जिसके बाद हमारा रब हमसे नाराज हो। फिर एक और चीज जिसका तस्करा आयत 101 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशयाइन इन तुब्दलकुम तसुक्कुम, यानी बेदा सवाल जवाब ना करो, क्योंकि जहां हलाल हराम की बात आती है लोग बेतुक्के सवाल पूछते हैं, तो शायद उसी का जवाब है इस आयत में। ऐ ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम जमाना नजूले कुरान में इन बातों को पूछोगे, यानी तुम पर वो जाहिर कर दी जाएंगी। पिछले सवालात को अल्लाह ने माफ कर दिया, और अल्लाह बड़ी मगफरत वाला बड़े हिल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और भी लोगों ने पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकर हो गए। यानी सवाल तो बड़े पूछते हो, अमल कब करोगे? अब अरबों ने कुछ चीजें अपने बुतों के और अपने बुजुर्गों के नाम पे हराम की हुई थी, उसका जिक्र है, क्योंकि लिख लीजिए जहां भी शिर्क आएगा वहां अपनी पसंद की शख्सियत को खुश करने के लिए या तो किसी जानवर को जाकर उसके कदमों में जिबा किया जाएगा या किसी चीज से रोका जाएगा। तो ये उस दौर की बिदात थी जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया। सुनिएगा, अल्लाह ताला ने ना बहीरा को मशरू किया है, और ना साहिबा को, और ना वसीला को, और ना हाम को, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अक्ल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल की तरफ रजू करो, तो कहते हैं हमको वही काफी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। ये था वो जुमला जिसने मक्का वालों को अल्लाह के नबी के आला अखलाक के बावजूद, सादिक और अमीन का मानने के बावजूद, बेहतरीन तरीके से तबलीग करने के बावजूद, बिलॉस खिदमत करने के बावजूद नहीं माना। बड़ों की बात तो माननी है लेकिन उनकी इबादत नहीं करनी है। एक जुमला लिख लीजिए कि इनको रिस्पेक्ट तो देनी है, होली नहीं बनाना। होली में वर्शिप आती है, और ये कब होता है? जब उनके गलत तरीकों को भी इसलिए अपनाए रहे कि चूंकि हमारे बड़े ये काम करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगरचे इनके बड़े ना कुछ समझ रखते हों और ना हिदायत रखते हों। तो देखिएगा जरा स्लाइड को कि हिदायत से दूरी की चार वजूहात हैं आयत 101 में। नंबर एक, बेजा सवालात, यूजलेस क्वेश्चन। आज हमारी उम्मत का भी मिजाज बदल चुका है। इल्म के बाद सवाल जवाब करेंगे तो फायदा होगा, और बगैर इल्म के सवाल जवाब होंगे तो वो सिर्फ एक कह लीजिए कि इल्मी इखाड़ा होगा, उसने ये कहा फलां तो ये कहते हैं, आप भी बता दीजिए ताकि आपको छोड़कर हम फिर अगले से पूछें। याद रखिए वो तालिब इल्म कहाँ पास होगा जो सिर्फ सवाल ही करता रहे। जवाब लीजिए, अमल कीजिए। दूसरी चीज, हुज्जतें, एक्सक्यूजेस। एक्चुअली एक्चुअली मेरी ये एक्सक्यूज है। और आजकल मैं अगर किसी से पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं और आप दौरे कुरान सुन रहे हैं नहीं कर रहे, और वो आगे से कुछ हुज्जत करे ना, तो मेरा दिल खट्टा हो जाता है कि अब इससे भी बड़े हालात क्या मांगेंगे अल्लाह से, कि अल्लाह ने घरों में बंद कर दिया कि बैठो सुनो लिखो पढ़ो, इस दीन को सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने शौहरों के साथ बैठकर दीन की बात करो, और कब करेंगे? ऐसे लगता है कि एक बड़ा स्पिनर रुक गया। आप कभी वॉशिंग मशीन को देखें, जब तेज चलकर एंड पे स्पिनिंग पे आती है ना, तो गड़गड़ाहट की आवाज आती है। हो सकता है जिन घरों में लगी हो उनको अंदाजा हो कि एक पूरी वाइब्रेशन होती है घर में, फिर उसके बाद एक गहरी खामोशी। इस स्पिन होती हुई दुनिया को अल्लाह ने इस वक्त स्टॉप का बटन दबा दिया, फिर भी ना मानोगे, सिर्फ हुज्जतें, तो जाइए फिर अल्लाह से अपने लिए दुआ कीजिए। फिर इसी तरह मुतालबे, डिमांड्स। असल में ये ना हुआ, मक्का वालों के मुतालबों के दौर में अगली सूरत नाजिल हुई थी जो पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि बाप दादा की अंधी तकलीद यानी आबा परस्ती का फितना लोगों को हक को जानकर मानकर भी मानने पे माइल नहीं करता। सही बुखारी की रिवायत है 7289। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा मुजरिम वो मुसलमान है जिसने किसी ऐसी चीज के मुतल्लिक पूछा जो हराम नहीं थी, और इसके सवाल की वजह से वो हराम कर दी गई। यानी बेजा सवालात, जबकि एक नबी मौजूद हो, वही का सिलसिला जारी हो, तो उस वक्त फिर शरीयत को बाज़ दफा सख्त कर देते हैं। तो देखिएगा, हमने आबा परस्ती के फितने को देखा आयत नंबर 103 की रोशनी में। पहली चीज, बाप दादा की अंधी तकलीद, हराम हलाल के खुद साख्ता मेयार, यानी शिर्क का एक बहुत बड़ा सबब क्या होता है कि लोग आंखें बंद करके अपने बाप दादा के तौर तरीकों पे चलना चाहते हैं। پھر اسی طرح حرام اور حلال کے خود ساختہ معیار مقرر کرتے ہیں، شرکیہ رسم و رواج اور توہمات ہوتے ہیں، اس پہ تو ایک پورا ٹاپک چاہیے جس کو آج اگر ہم موجودہ دور کے مسلمان شادیوں میں اور بچوں کی پیدائش پہ اور دلہن کے گھر میں آنے پہ کیا کچھ رسمیں ادا کرتے ہیں، شرک سے بھڑی ہوئی رسمیں. بس آپ دیکھیں، آپ کہتے پیلا جوڑا، کتنا لاڈلا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے پیلا جوڑا پہنے. کبھی آپ نے سنا کہ یہ کیوں ہے، کہاں سے؟ جو کرتے ہیں وہ تو کریں، ان کا تو اصول ہے، کیونکہ ہندو کلچر میں پیلا رنگ حفاظت کی علامت ہے. تو دلہن کو پیلا جوڑا پہنا کر گویا کہ وہ اپنی اس دیوی کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ جو کہ حفاظت کرتی ہے. اب آپ بولیں یہ کہاں لکھا ہے، تو لکھے پڑھنے کی تو ہمیں عادت ہی نہیں، ہم تو صرف سندھی ہوئی باتوں پہ چلتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے. دلہن گھر آئی، آپ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، دو کام کرنے پڑیں گے، ایک تو قرآن لاؤ ذرا قرآن کے سائے میں گھر میں آئے دلہن، اور دوسرا یہ کہ ذرا چوکھٹ پہ تیل تو ڈال دیں. یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے رسم کی، آپ کی نیت بری نہیں تھی، لیکن یاد رکھیے ایک جملہ لکھ لیجئے، ہر رسم کے پیچھے شرک ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ، کیونکہ کلچر مذہب کے رنگ میں اسی طرح عام ہوتا ہے. آپ کیوں تیل ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ بلائیں ٹلیں گی. کیا یہ طریقہ سکھایا اللہ کے نبی نے بلاؤں کو ڈالنے کا؟ تو ہر ایک آج بھی اپنے گھر کے باہر تھوڑا تیل ڈالے، کرونا اندر ہی نہیں آئے گا. آپ گروسری سٹوروں میں تیل ڈال دیجئے، بچوں کے اسکولوں میں ڈالیے، اور بسم اللہ کیجئے، لاک ڈاؤن ختم کریں. یہ تو ہم کر نہیں پائیں گے. تو یہ توہمات، وہمی باتیں. اسی طرح اطیع اللہ اور اطیع رسول نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور باپ دادا کے نام، یقین کریے نام باپ دادا کا لیتے ہیں، بس اصل میں خواہشات کی پیروی ہے. آج کپڑے تو وہ کوئی نہیں پہنتا جو دادی پہنتی تھی، صوفہ تو وہ گھر میں آج بھی نہیں جو نانی کا تھا. آج باپ دادا جیسی شرافت تو نہیں ہے، لیکن یہ صرف چند ایسے ڈھکوسلے ہیں کہ جس کے بعد انسان اپنی خواہشوں کو بڑے آرام سے پورا کرتا ہے. تو دیکھیے گا ایک اور سین آپ کے سامنے ہے، مومنین کا راستہ اور ان کا انجام کیا ہوگا، اور آبا پرستی کے فتنے میں مبتلا لوگوں کا راستہ اور انجام کیا ہوگا. پہلی قسم کے لوگ شریعت کے راستے پہ چلتے ہیں، سنتوں کو اپناتے ہیں، انجام آخرت میں کامیابی. اس کے برعکس دوسری قسم کے لوگ شہوت کے راستے پر چلتے ہیں، بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، انجام آخرت میں ناکامی کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنے والا بنائے. ابن ماجہ کی روایت ہے 40، اور ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. حضرت ارباز بن ساریہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. تو بدعت کیا ہے؟ اصل میں یہ شرک کے بعد کا دوسرا جراثیم ہے. جس طرح شرک کی موجودگی میں نیکیاں قبول نہیں ہوتی نا، اسی طرح بدعت کی موجودگی میں بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ شرک اللہ کی قدر نہیں کرنا، وما قدر اللہ کا قدری، اور بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری ہے، سنتوں کی ناقدری ہے. آج ہم نے دین میں ایسے ایسے نئے کام کیے کہ جس کو کر کے مطمئن ہے، کر تو لیا، نیاز تو دے دی 11 کو، رجب میں کنڈے تو پکا لیا، اور کیا کریں؟ اچھا یہ نہیں، یہ بڑا مشکل ہے. یعنی جب سنتیں مٹتی ہیں تو بدعت آتی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدعت کے ساتھ سنتوں کی موت ہوتی ہے، یعنی سنت فوت ہوگی، ریپلیسمنٹ ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچائے. یہ ایک الگ موضوع بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیاح کی تقسیم خلاف سنت ہے، جو ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں. بدعتی کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رد ہے، بدعتی کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ بدعت نہ چھوڑ دے. بدعت جاری کرنے والے پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے. بدعت رائج کرنے والا اپنا اور دوسرے بدعتیوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور بدعت اختیار کرنے والے سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اب اس کو سن کر آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، تو ایک بات نوٹ کیجئے، بدعتی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے کوئی نیا کام شروع کرے. آج کے دور کے وہ لوگ جو خاندان اور معاشروں میں نون ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں، بہت سارے کر رہے ہیں، جس کو ڈاؤٹ ہو وہ چیک کر سکتا ہے قرآن سنت کے آئینے میں، لیکن یاد رکھیے کہ وہ بدعتی نہیں، مبتدی کہلائیں گے. بات واضح ہے؟ یعنی بدعتی کی پھر پیروی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ بچائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نام لے کر کہا کہ عربوں میں سب سے پہلے شرک کو رائج کرنے والا شخص میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں ہے، اور اس کی انتڑیاں باہر ہے جسم کے. یعنی اس قسم کی بات کی گئی. تو کوئی نیا کام نہ شروع کیجئے، کیونکہ بدع نئے چیز کو کہتے ہیں. تو جو آج کل کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بدعتی تو نہیں، لیکن غلط کام کو کنٹینیو کرنے والوں کا बोझ तो बहरहाल मौजूद होगा। अल्लाह ताला हमें सच्चे दीन पे अमल की तौफीक दे। थोड़ा कीजिए, वो कीजिए जो असली हो। जाली ज्यादा लेकर, नकली कॉपीड लेकर ज्यादा क्या करेंगे। आज तो हम कपड़ों में भी, डिजाइनिंग में भी कॉपीज लेते हैं और फुला फुला। तो अल्लाह ताला आपको मुझे बचा ले। और सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं सब करते हैं, क्या करें, किसको बुरा भला कहें। तो लिख लीजिए, आयत बड़ी खूबसूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम। ऐमान वालों, अपनी फिक्र करो। जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको बतला देगा जो कुछ तुम सब करते थे। यानी सारे घर वाले कुछ कर रहे हैं, सारी दोस्तें कुछ कर रही हैं, और तुम अच्छे तरीके से पैगाम भी दे चुके हो। तो अब उनको उनके हाल पे छोड़कर अपनी इसलाह कर लो। ये कहते रहना आप सब कर रहे हैं तो मैं अलग क्यों, फिर तो सब मुझसे कट जाएंगे। तो या फिर बंदों से जुड़ जाइए या रब से जुड़ जाइए। और इसकी फिक्र जब लग जाए तो इंसान फिर आराम से बैठ नहीं सकता। आगे तवील आयत है जिसका फिर जिक्र माली मामलात से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, तुम्हारे आपस में दो शख्स का गवाह होना मुनासिब है जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो। वो दो शख्स ऐसे हों कि दीनदार हों, खा तुम में से या गैर लोगों में से दो शख्स हों। अगर तुम कहीं सफर में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों को बाद नमाज रोक लो, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं। हम इस कसम के इवज कोई नफा नहीं लेना चाहते, अगरचे कोई कराबतदार भी हो, और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा न करेंगे। हम इस हालत में सख्त गुनाहगार होंगे। फिर अगर इसकी इत्तला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, तो इन लोगों में से जिनके मुकाबले में गुनाह का इर्तकाब हुआ था, और वो शख्स जो सब में करीब तर हैं, जहां वो दोनों खड़े हुए थे, ये दोनों खड़े हों, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि बिल यकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज्यादा राह रास्त है। और अगर हमने जरा तजावुज नहीं किया और हमने जरा तजावुज नहीं किया, हम इस हालत में सख्त जालिम होंगे। ये करीब जरिया है इस अमर का कि वो लोग ठीक तौर पर वाक़े, यानी वो लोग वाक़े को ठीक तौर पर जाहिर करें, या इस बात से डर जाएं कि इनके कसम लेने के बाद कसमें उल्टी पड़ जाएंगी। और अल्लाह ताला से डरो। और सुनो, क्या सुनो, कि अल्लाह फासिकीन को हिदायत नहीं करता। अल्लाह ताला नाफरमानों को जानते बूझते गुनाह करने वालों को हिदायत नहीं देता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये भी नोट कीजिएगा। जिस रोज अल्लाह ताला तमाम पैगम्बरों को जमा करेगा, फिर इरशाद फरमाएगा कि तुमको क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमको कुछ खबर नहीं, तू ही पोशीदा बातों को जानने वाला है। ये है अंबिया कराम का मुहासबा। क्यामत के दिन जहां इंसानियत को कटहरों में खड़ा किया जाएगा, तो जवाबदेही तो अंबिया कराम से भी होगी जो अपनी जिंदगी का एक एक मिनट अल्लाह के पैगाम को उसके बंदों तक पहुंचाने में लग गए। और ये वक्त कितना सख्त होगा। ये थी वो आयतें जिनको पढ़ के और सुन के अल्लाह के नबी भी परेशान होते थे। और आपको मुझे, अगर आप ये फिक्र नहीं लगी तो भी फिर हमें बहुत सीखना। आपको मुझे भी उम्मत वसत का फर्द होते हुए जवाबदही के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ से सूरत के अंत तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुहासिबा, इन आयतों के अंदर एक मुकालमा भी है। इसको सुनते वक्त जहन में लाइएगा ईसाइयों का उस वक्त क्या हाल होगा। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात से मुतल्लिक मुख्तलिफ सेक्ट तो बन गए नसारा के। क्यामत के दिन उन लोगों का क्या बनेगा जो हजरत ईसा को सेवियर कहते हैं और उन्हीं उन्हीं की सिफारिश की उम्मीद में हैं। उनके तो रंग न उड़ जाएंगे। और वो नंस जो सारी जिंदगी अपनी हलाल ख्वाहिशात को भी इस उम्मीद पे छोड़ती रही कि हम जीजिस की दुल्हने बनेंगी, वो भी बेचारी उस वक्त देख लेंगी कि हमने तो दुनिया भी खोई और आखिरत भी खोई। कि जिस तरह कहते हैं ना कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था। तो याद रखिए कि गैर के सहारे मकड़ी के जाले हैं। शिर्क गैर का सहारा। आज भी ये शिर्किया चीजें हैं कि हम कहते हैं कि फलां मदद करेगा। ठीक है, अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे अपनी कौमों की, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि क्या वाकई ये हमारी कौम के लोग थे भी कि नहीं। तो एक स्ट्रेच में सुनिएगा, इस काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ईसा इब्ने मरियम, मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर हुआ जब मैंने तुमको रूहुल कुदुस से ताईद दी। तुम लोगों से कलाम करते थे गोद में भी और बड़ी उम्र में भी, जबकि मैंने तुमको किताबो हिकमत की बातें और तौरात और इंजील की तालीम दी, और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे। जैसे परिंदे की शक्ल होती है, फिर तुम इनके अंदर फूंक मार देते थे जिससे वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से, और तुम अच्छा कर देते थे मादरजाद अंधे को और कोड़ी को मेरे हुक्म से। हजरत ईसा को जो मोजजात दिए गए थे उनकी तरफ इशारा होगा क्यामत के दिन। क्या पता चला कि मोजजे भी एक नेमत हैं जिसका क्यामत के दिन सवाल होगा। जबकि तुम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे बास रखा, जब तुम इनके पास दलीलें लेकर आए थे, फिर इनमें जो इनकार करने वाले थे उन्होंने कहा कि बजुस खुले जादू के ये और कुछ भी नहीं, और जबकि मैंने हवारीयीन को हुक्म दिया, हवारी कौन थे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहते हैं, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम के साथियों को हवारी कहते हैं। क्या हुक्म दिया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा हम ईमान लाए, आप शाहिद रहिए कि हम पूरे फरमा बरदार हैं। देखिए हजरत ईसा अलैहि सलाम के करीब के जो लोग थे ना, वो खुद को क्या कह रहे हैं, 111 को हाईलाइट कर लें, बी अन्ना मुस्लिमून। तो क्या बात पता चली कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के दौर में उनके पैरोकार या उनको मानने वाले खुद को मुसलमान कहते थे। तो आप पूछेंगे फिर ये लफ्ज ईसाई कहाँ से आ गया, तो ये बात में रखा हुआ नाम है, सेक्टेरियन नाम, फिरका वारियत वाला नाम है। अल्लाह ताला हमें भी मुसलमान बनने पे खुश होने वाला बनाए। इस कालल हवारीयून वो वक्त याद के काबिल है जबकि हवारियों ने अर्ज की, ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से एक खौन नाजिल कर दे। आपने फरमाया कि अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान रखते हो। वो बोले कि हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला और हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। इन्हीं कौम का मुतालबा था कि जैसे बनी इसराइल पर मनोसलवा उतरा तो हम पर भी कुछ उतरे। अब उस जवाब में ईसा अलैहि सलाम दुआ के लिए हाथ खड़े करते हैं। इससे पता चलता है कि अम्बिया कराम भी अल्लाह से ही मांगते थे, क्योंकि माँ सिवा अल्लाह के मांगना शिर्क है। देखिएगा हजरत ईसा की दुआ का अंदाज, बीच में किसी और का नाम नहीं बल्कि काल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना। ईसा इब्न मरियम ने दुआ की कि अल्लाह ए हमारे परवरदिगार। ये वाहिद दुआ है कुरान और हदीस की, खास तौर पर कुरान पाक की, जहाँ लफ्ज अल्लाहुम्मा और रब्बना इकट्ठा आ रहा है। अमूमन कुरानी दुआ में रब्बना होता है और मसनून दुआ में अल्लाहुम्मा होता है, तो ये इस दुआ की एक अलग से यूनिक चीज है। क्या दुआ थी, अनजिल अलैना माइदा, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए यानी जो हम में से अव्वल हैं और जो बात के हैं इन सब के लिए खुशी की बात हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और तू हमको रिस्क अता फरमा दे और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, यानी आई कैन डू इट, ये मानी है, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद ना हक शनासी करेगा तो मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि वो सजा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा। तो क्या पता चला, आयतें भी बता रही हैं और तफसीर से भी पता चलता है कि फिर मायदा नहीं उतरा था, क्योंकि जितनी बड़ी नेमत उतना बड़ा हिसाब। ये एक मोजजा था जो अगर दे दिया जाता और फिर इसके मुनकिरों पर दुनिया में ही अजाब आ जाता। तो बड़े बड़े मोजजे नहीं मांगने चाहिए। तौफीक मांगिए कि अल्लाह ताला ऐसे ही हक को कबूल करने की जुरत दे दे। और वो वक्त भी काबिले जिक्र है जब कि अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के माबूद करार दे दो। देखिए शिर्क का मुतालबा एक नबी कैसे कर सकता था। ईसा अलैहि सलाम अर्ज करेंगे मैं तो तुझको मुनज्जा समझता हूँ यानी पाक समझता हूँ, मुझको किसी तरह ये लायक नहीं यानी सूट नहीं करता, जेबा ना था कि मैं ऐसी बात कहता जिसको कहने का मुझको कोई हक नहीं है, अगर मैंने कहा होगा तो तुझको इसका इल्म होगा। देखिए ईसा का अकीदा कितना वाज़ है, तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है इसको नहीं जानता, तमाम गैबों के जानने वाला तू ही है। तौहीद और शिर्क के तनाजर में इन जुमलों को देखिएगा बाद में कि अम्बिया कराम के अकीदे में कहीं शिर्क नहीं होता, वो अल्लाह ताला का हक अल्लाह को देते हैं और बंदों का हक बंदों को देते हैं। तो आप देखिए कि आज भी कुछ ऐसे अकायद आम कर दिए गए जो मुशरिकाना है। अल्लाह के नबी कितने वाजे तरीके से कितनी क्लैरिटी के साथ अल्लाह के मामलात को अपने साथ रखते हैं और ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला जो आप हैं वो दूसरे भी हैं। इसके बरक्स आज इवन उम्मत मुस्लिमा के कानों में जो जुमले टकराते हैं, आपने कुछ मुशरिकाना अकायद के नाम जरूर सुने होंगे, मसलन वहदतुल हलूल, हलूल का अकीदा। ये क्या होता है? अल्लाह के नबी और सहाबा ने शायद कभी इसके बारे में सोचा भी ना हो। और वो क्या कि अल्लाह का बंदे की जात में मदगम हो जाना, नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला सुम्मा नऊजुबिल्ला, एक बंदे की क्या औकात है? और अल्लाह जैसी इतनी बड़ी हस्ती उसमें आ जाए, तो जब बंदा गुनाह करता है तो उस वक्त अल्लाह किधर होता है? नऊजुबिल्ला। और ये बड़ी कवालियों में आपको ये जुमले मिलेंगे, अंदर तू बाहर तू ऊपर तू नीचे तू। और अक्सर लोग जो ये कहते हैं ना अल्लाह हर जगह है, उसमें भी ये सोच होती है कहीं कहीं। फिर एक है फलसफा वहदतुल वजूद का, ये क्या होता है? अल्लाह की जात को कायनात की हर चीज में मौजूद समझना, वहदतुल वजूद कहलाता है। यानी पहली में तो सिर्फ बंदे के अंदर नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह आता है, दूसरी में कायनात की हर चीज है। इस पे देखिए हिंदू मजहब ने 4 करोड़ से ज्यादा बुत बना दिए, उनके लिए पीपल का पत्ता भी खुदा है। नऊज़ु बिल्लाह शर्मगाह तक को तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये दुनिया में इंसान के वजूद की जरिया बनती है, और पीपल से डरे हनुमान से डरे, ये क्या है? हर चीज में अल्लाह का रंग है, कहते हैं अल्लाह का अवतार है हर चीज नऊज़ु बिल्लाह। और इस तरह वहदतु शहूद, पहले अकीदे का अपोजिट, बंदे का अल्लाह की जात में मदगम हो जाने का अकीदा वहदतु शहूद कहलाता है। ये बहुत सारे बुजुर्गों के लिए लोग बोलते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अब ये अल्लाह ही बन चुके हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे। हजरत ईसा को ये सब पता था, इसीलिए तो कहते हैं आयत 117 देखिएगा, मा कुलतु लहुम, मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा। ऐसे नहीं लग रहा कि होंठ खुश्क हो रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, कितना खौफ आ रहा होगा कि अल्लाह पकड़ ना ले। जवाबदेही तो सख्त है उस दिन की, इसमें कोई शक नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम उस जगह खड़े अपनी सफाई भी पेश करते हैं और साथ ही कहते हैं, मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा था मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करो। ये है ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज, तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं इन पर गवाह रहा जब तक मैं इनके बीच में रहा, यानी आसमान पे उठाने से पहले के दौर के लोग। फिर जब तूने मुझको उठा लिया किधर ऊपर, तो तू ही इन पर मुत्तले रहा। यानी आप क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता। अल्लाह ने आसमानों पर उनको उठा तो लिया, लेकिन इस आयत से पता चलता है कि ईसा को नहीं पता, या कम अज कम उनके बिगाड़ के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का कोई हिस्सा नहीं है। और तू हर चीज की पूरी खबर रखता है, अगर तू इनको सजा दे तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू माफ फरमा दे तो तू जबरदस्त है हिकमत वाला। इस आयत पर अल्लाह के नबी सल्लम पूरी रात रोते रहे। अल्लाह के नबियों की बात से पता चलता है कि वो इतने बिगाड़ के बावजूद भी अपनी कौमों की बख्शिश के हरीस होते हैं, क्योंकि लफ्ज लग रहे हैं कि बंदे हैं तेरे, देख ले, चल वैसे माफ ही कर दे। जैसे माँ गुस्से में आए हुए बाप को कहती है, देख लीजिए है तो गलत काम करता, चले छोड़िए आपका बेटा है, कोई बात नहीं। मिसाल से बात समझ आती है, अदरवाइज अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई मिसाल दे नहीं सकता इंसान। हकीकत ये है कि ये दिन बड़ा मुश्किल देना है। अब खात्मा सूरत की आयतें सुनिए, एक साइड पे कीजिए हजरत ईसा का क्या मामला होगा और फलां फलां का क्या होगा, अपने ऊपर लेकर इसको सुनिएगा। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ये वो दिन है कि जो लोग सच्चे थे इनका सच्चा होना इनके काम आएगा, इनको बाग मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी जिनमें वो हमेशा हमेशा को रहेंगे। अल्लाह ताला इनसे राजी हुआ और खुश, और ये अल्लाह से राजी और खुश हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ही की सल्तनत आसमानों की और जमीन की और इन चीजों की जो इनमें मौजूद हैं, और हबो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। यौम यन्फउ सादिकीन सिद्कुहुम, हाईलाइट कीजिए यहाँ सादिकीन कौन है और सच क्या है। तो एक जुमला जो मैंने पारे के तारुफ में बोला था, दुनिया का सबसे बड़ा सच तौहीद है, तो मुशरिक झूठ बोलता है, शिर्क करने वाला उस सच से रूगर्दानी करता है। तो फिर क्या पता चला कि अल्लाह की रजा मिलनी और पानी इसका जरिया शिर्क से मुंह फेर कर तौहीद को मानना है। और ये लकब कितना प्यारा है, रदी अल्लाह अन्हु व रदुअन। अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और हम तुझसे राजी हैं, आगे भी जाके हमें राजी कर देना। तो हमने 100 से 120 तक क्या पढ़ा, क्या है आयतों के टॉपिक, या अपने लिए चंद सवाल जवाब कर लीजिए। यानी अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात को, अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात को बिला चूं चरा मानना चाहिए। सवाल जवाब ना कीजिए, वो बच्चा तो माँ को भी नहीं अच्छा लगता जो हर बात के जवाब में सवाल पूछे। तो फिर कसरत सवालात से बचना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, मनवाना नहीं। नबियों के मौजज़े भी अल्लाह के हुक्म से ही आते थे, यानी नबी का इख्तियार इतना भी नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई मौजज़ा दिखा दे اور سب سے بات بڑی کہ اللہ بہترین رازقین میں سے ہے، واللہ خیرون رازقین، یعنی جو اللہ دے دے وانت خیر الرازقین، تو اللہ تعالیٰ ہی سے رزق مانگنا ہے، کوئی کمی بیشی ہو اس صورت میں. کیا سیکھا سورت مائدہ سے؟ بڑی کمپاؤنڈ سورت تھی، آپ نے دیکھا ہوگا بار بار یا ایھا الذین آمنوا تھا، یعنی آپ کو مجھے خطاب کیا گیا تھا. تو بندہ مومن کا مقصد کیا ہے، گول کیا ہے ایک بلیور کا؟ پہلی بات ہے خود توحید پر قائم رہے، پھر مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کرنا، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس مقصد کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت سورت پوری ہوتی ہے اور ایک اور خوبصورت سورت شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورت الانعام. مستقل سورت بقرہ سے ابھی تک ہم مدنی سورتیں پڑھ رہے تھے جن کا انداز ذرا سا حکمی ہے، ڈوز ڈونٹس بہت سارے تھے. اس کے برعکس مکی دور کیا تھا؟ تین بنیادی تعلیمات، توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ. اس کا تذکرہ سورت البقرہ سے لے کر مائدہ تک اس طرح نہیں ہوا جتنا باگے سے ہوگا. آپ کہہ لیجئے کہ شروع دور میں، مکی دور میں تین مضامین پڑھائے گئے، جس میں اللہ کو ایک ماننا، شرک سے پاک ہونا، دوسری طرف رسول کا کیا مقام ہے، رسول دنیا میں کیا کرتے، کیوں آئے، کیوں بھیجے گئے، اور تیسری چیز یہ تھی کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا. مکہ والوں کو ان تینوں باتوں سے بڑی چڑ تھی، وجہ آبا پرستی تھی، کہ ان کے باپ دادا اتنا زیادہ ان عقائد سے دور ہو چکے تھے، حالانکہ اپنا تعلق حضرت ابراہیم سے جوڑتے تھے اور واقعی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. لیکن یاد رکھیے کہ جب باپ دادا کو نسل در نسل آپ ایک ہی کام کرتا دیکھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو وہی کام صحیح لگتا ہے. تو اس معاشرے میں جو پکار تھی وہ توحید کی تھی، شرک کی نفی تھی. تو سورت الانعام سے اب باقاعدہ آپ اس کو محسوس کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ کہ کیسے اس معاشرے میں یہ پیغام آیا. اور سورت الانعام جس کو کیٹلز بھی کہتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے جانوروں کا ذکر ہے کہ جن کو مکہ والوں نے اپنے بتوں اور اپنے بزرگوں کے نام پہ حرام کر لیا تھا، کچھ چیزوں کو حلال کر لیا تھا. یعنی جب شریعت میں اپنی مرضیاں کی جاتی ہیں، دخل اندازیاں کی جاتی ہیں، تو وہ سب کچھ ہم اس میں پڑھیں گے. اور یہ سورت الحمدللہ سے شروع ہونے والی دوسری سورت ہے. ایک مستقل خطبے کے طور پہ نازل ہوئی، بلکہ بعض جگہ تو آتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی اترے. اور اسی طرح سے جب مکہ والوں نے مطالبے کیے بہت سارے، تو اس کے جواب میں یہ سورت اتری تھی. اور اس میں غور و فکر کی بہت ساری باتیں ہیں، کائنات کا بہت سارا ذکر ہے، تاریخ یعنی ماضی کا ذکر ہے، حال موجودہ وقت، اس وقت کائنات پہ غور و فکر کر لو، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا یعنی آخرت، قیامت کے بعد کے مناظر بہت سارے ہیں. آپ نے میں نے اس کو سننا ہے اس نظر سے کہ شرک کی مختلف اقسام کیا ہیں، ممکنہ چیزیں جس کے ساتھ شرک ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سوچ سے دیکھنا ہے کہ لوگ اللہ کو رب تو مان ہی جاتے ہیں لیکن اس کے حکموں کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ان کو مشکل لگتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر دعا کرتے جائیں گے کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی شرک کی کباختوں سے دور رکھنا. اور یاد رکھیے کہ مشرک سے نہیں، شرک سے دوری اختیار کیجیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی قربت ہوتی ہے پھر ان کی چیزیں بری نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی، اس کی تعریفوں کے ساتھ یہ سورت شروع ہوتی ہے. اس کے شکرانے، اس کی دعائیں، اس کی طرف کون؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ، پھر بھی منکر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. بڑی پیاری آیت ہے. پچھلے سالوں میں میں نے آیت کا شروع زیادہ ڈیٹیل سے کیا تھا، جس میں اندھیرے اور روشنیوں کا سفر تھا، کہ انسان باہر سے اندھیرا ہے، مادے سے بنا ہے، مٹی سے ہے، ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہے، لیکن اگر اندر دل میں نورانیت آ جائے اور نور ہدایت آ جائے تو کیا خوبصورت شخصیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس وقت اپنے پارے کے موضوع کے اعتبار سے یا عادل ان پہ غور کیجئے گا. اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا, استغفر اللہ. آپ دیکھیں کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون کی ایک جھلک آپ کے سامنے ہے. کوئی ماتھا ٹیکتا ہے تو کوئی رکوع کی کیفیت میں ہے تو کوئی سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل کھول دے. تو یاد رکھیے, انسان شرک میں مبتلا کیسے ہوتا ہے؟ اپنے باپ دادا کا نام لے کر. یہ کام کرنے والے ان کی نیت بری نہیں ہے, آپ ان سے نفرت نہیں کریں گے, کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے. کر سکتے ہیں تو ان کو اس سچے نور سے جوڑ دیجئے جو قرآن اور حدیث کا نور زندگی میں آئے گا, سب اندھیرے دور ہوں گے. ورنہ ہوتا کیا, اب آپ پرستی کے فتنے میں مبتلا مسلمانوں کے غیر اللہ کے بارے میں کچھ عقائد بنتے ہیں جس میں سراسر شرک ہوتا ہے. اب یہ کوئی بزرگ بھی ہو سکتے ہیں, زندہ بھی اور فوت شدہ بھی, اور اسی طرح یہ کئی قسم کی شکلوں میں آتے ہیں. عقائد کیا بنتے ہیں ذرا سا سمجھیے, کیونکہ موضوع شرک ہے, اور اگر یہ باتیں میں نے آپ سے شیئر نہیں کی تو میری بھی جواب دہی ہوگی. آپ کو بری لگیں تو میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس بات کو کھلے دل سے سننے اور سمجھنے کے لیے چن لے, اور مجھے بھی حق بات کہنے کی توفیق دے. تو شرک سے بھرے ہوئے کچھ عقائد جو آج مسلمانوں میں بھی ہیں, غیروں کو تم بڑی رونت سے پیچھے کر دیتے ہیں. وہ غالباً مولانا حالی کے کچھ اشعار بھی ہیں جو مجھے آتے تو نہیں, کہ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر کہلائے, اور مسلمان جو مرضی کریں, جس کے آخر میں کہتے کشادہ ہیں مومنوں پہ راہیں. ہاں جی, جس کو جو مرضی کہہ دیں, یہ کرنی والے, یہ پہنچانے والے. تو ہم سب کو ریوائیول آف فیتھ کی ضرورت ہے اس دور میں, اور اللہ کو راضی کرنا ہے نا, ناراض رب کو منانا ہے, تو شرک سے توبہ کرنی پڑے گی, شرک کے مظاہر کو بند کرنا پڑے گا. فلاں اپنے ملک کا نام لیجئے جو جو جہاں بیٹھے, اور خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے اسٹوڈنٹس, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ لگانے والے کیا پاکستان کو پاک کر چکے شرک سے اور اس طرح کی چیزوں سے؟ ان چیزوں پہ غور کیجئے. پہلی بات جو ان لوگوں کے دل میں شیطان ڈالتا ہے, کہتا ہے کہ یہ جہنم سے چھڑوا لیں گے تمہیں. تبھی تو بندہ اپنے رب کو ناراض کر کے ہی صحیح ان لوگوں کی طرف آتا ہے. پھر بعض لوگوں کے لیے یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ نیکی کی توفیق دینے والے یہ ہیں, یعنی کوئی نیکی بھی کرنی ہے تو ان سے پوچھ کے کیجیے. پھر غیر اللہ کو غیب کا علم ہوتا ہے اور وہ اولاد دیتے ہیں. اس پہ تو نام لکھ لیجیے, آپ کے اپنے ملکوں میں کتنے ہی نام مل جائیں گے, نعوذ باللہ. پھر مشکلیں حل کرنے والے اور بگڑی پار لگانے والے ہوتے ہیں, اور سارے نبی تیرے در کے سوالی. اللہ کے نبی کی ذات سے بھی بہت شرک ہوتا ہے, اور اس کے بعد تو اب بزرگوں کے نام پہ ہو ہی رہا. پھر اسی طرح یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ زندگی میں برکت, رزق کی فراوانی اور صحت دینے والے یہ بزرگ ہوتے ہیں. زندہ کو پیر کہتے ہیں, جو فوت ہو جائے اس کو بزرگ کہنے لگتے ہیں. اسی طرح نفع, بھلائیاں اور اقتدار دینے والے. اسی لیے تو کچھ حکمرانوں کے جملے معروف ہوئے تھے نا, کہ اگر عین وقت پہ میں فلاں بابا جی کی قبر پہ پہنچ جاتی تو میں نے جیتنا تھا, اب دوسرے جیت گئے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کرواتے ہیں, بڑے اثر و رسوخ والے ہیں, کڑوے جملے ہیں لیکن یہ بولتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری اصلاح فرما دے, اور دنیا سے جانے سے پہلے ہر ایک کو شرکی عقائد سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں رب کی قدر نہیں ہے, آؤ سنو وہ کیا کچھ کرتا ہے. هو الذی خلقکم من طین, وہ تو ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا, پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وہ خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے, پھر بھی تم شک رکھتے ہو. یعنی اتنے پیارے کرنی والے اور اتنی دنیا کے اندر خیر دینے والے کو چھوڑ کر تم ان پہ جاتے ہو. دیکھیے عقل میں آتی ہے بات. آپ آج سائنس سے پوچھئے کہ مٹی میں جانے کے کتنے دن کے بعد کیا ہوتا ہے, اور ایک دن آتا ہے کہ ہڈیاں بھی کھل جاتی ہیں. تو ڈھانچوں سے مانگتے ہو, اسکیلٹن سے مانگتے ہو. اس سے تو اچھا تھا تم خود اپنے پاس بیٹھے سے کوئی تھوڑی سی مدد لے لو, کہ ذرا مجھے بتائیے کوئی ڈاکٹر ہے جو علاج کرتا ہے کہ اولاد ہو جائے, تو شاید وہ آپ کو زیادہ دے سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اور یاد رکھیے شرک آتا ہی وہاں ہے جب ہماری کوئی حاجت ہوتی ہے, جہاں ہماری کوئی طلب ہوتی ہے, اور اس طرح سے پھر انسان اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنے لگ جاتا ہے. پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کیسے پیش کیا, اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. نوٹ کریں, زمین اور آسمان کا خدا فرق نہیں. شرک پھیلانے والے عقائد میں ایک فرقہ کیا کہتا ہے کہ دو خدا ہیں, ایک زمین کا اور ایک آسمان کا, اور جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا اہرمن اور یزداں کہتے ہیں. دیکھیے اگر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چلتا. مثلا بارش کو لیجئے, कुछ चीजें जमीन से मिलती हैं और कुछ आसमान पे होती हैं, फिर बादल बनते हैं, तो दोनों का आपस में झगड़ा ही रहता तो फिर दुनिया को बारिश कैसे मिलती। वो तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी और तुम्हारे जाहिर अहवाल को भी जानता है, और तुम जो कुछ अमल करते हो इसको भी जानता है, और इनके पास कोई निशानी भी इनके रब की निशानियों में से नहीं आती, मगर वो इसे राज ही करते हैं। जैसे इस वक्त कुरान की आयतों को निशानियों के तौर पे ही ले लीजिए, सुनते वक्त भी दिल कह रहे नहीं नहीं छोड़े छोड़े, ये तुम्हारे अकायद ही खराब कर देंगे। उन्होंने इस सच्ची किताब को भी झुटलाया जबकि वो इनके पास पहुंची। अफसोस मक्का वालों के हाल पे। देखिए आज मैं और आप इस किताब से कितनी मोहब्बत करते हैं ना, सोचिए उन लोगों की खुशबख्ती का राज जिनके पास से उतरी थी, कितनी कदर की। हकीकत है कि जो बड़ों ने बात कही वो सोने के पानी से लिखिएगा कि चिराग तले अंधेरा। जहां बैठकर किताब पढ़ी जाती है वहां कोई नहीं आएगा, और बाद वाले उसकी रिकॉर्डिंग से शायद कितना फायदा ले ले। बदबख्ती और महरूमी की बात है। सच्ची तौबा करे हर वो बंदा जिसको मौका मिले और फिर भी वो इस किताब से फायदा न उठाए। फरमाया सो जल्द ही इनको खबर मिल जाएगी इस चीज की जिसके साथ ये लोग मजाक किया करते थे। नोट कीजिएगा, हिदायत किसको नहीं मिलती। देखिए ला या लमून को भी हिदायत मिल जाएगी, शर्त यह कि इल्म हासिल कर लें, जो पीछे बात हो गई। गाफिलून को भी हिदायत मिल सकती है, शर्त यह कि गफलत के पर्दे चाक कर दें। लेकिन जिनको हिदायत नहीं मिलती वो मुस्तहजियून है। मजाक करना दीन का बड़ी बात है, बड़ी जुरत है। हिदायत छोड़ने के मुतरादिफ है मजाक उड़ाना। तो लिहाजा ना दीन का, ना दीन वालों का, और ना कुछ रिचुअल्स का मजाक उड़ाइए जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके हैं जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी, और हमने इन पर खूब बारिशें बरसाई, और हमने इनके नीचे से नहरें जारी कर दी, फिर हमने इनको इनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला, और इनके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। अल्लाह ताला को तरक्की बुरी नहीं लगती कि दौलत बहुत थी तो बहुत चल फिर रहे थे तो हलाक किया, बल्कि पकड़ की वजह उनके बुरे आमाल थे। क्या पता चला कि तरक्की करने के बाद जो अय्याशियां शुरू हो जाती हैं और जो लग्जरीज के नाम पे अल्लाह के कवानीन टूटते हैं, इस पे कौमें हलाक की जाती हैं। और अगर हम कागज पर लिखा हुआ कोई नविश्ताब पर नाजिल फरमाते फिर इसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये इनकार करने वाले लोग यही कहते कि ये कुछ भी नहीं मगर सरीख जादू है। यानी आज तो कहते हैं ना कि नबी के दिल पे क्यों उतरता है, हमारे सामने फरिश्ता आकर दिखाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये भी हो जाता तो भी ना मानते। देखिए शिर्क फैलने में एक ये भी बहुत बड़ी वजह, लोग कहते हैं किसने कहा कि इधर है दिखाओ, और नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी वो तो उन पर जी एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे और वो तो शैतान आता था, ये सारे इल्जाम सहने पड़ते हैं इस रास्ते की तबलीग में। आपने ये सह लिए, सेल्फ डिफेंस में नहीं चले आप इस्लाम के लिए चले। जो मुबल्लिग अपनी जात की और अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ के गिरने के डर से हक छुपाएगा अल्लाह के हाथ तो उसका कोई मुकाम नहीं होगा। हाँ दुनिया में हजारों लाइक्स उसको चाहे मिल जाए, तो हमेशा दुआ किया करें इस जगह बैठकर अल्लाह हक बात कहने की तौफीक दे। एक और एतराज करते थे अल्लाह के नबी पे, और ये लोग यूं कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम फरिश्ता भी भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर इनको जरा मोहलत ना दी जाती, यानी वो फरिश्ता मौत का फरिश्ता होता तो फिर सारी बातें ही खत्म होती। और अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज करते, एक और इल्जाम था अल्लाह के नबी पे कि इंसान क्यों है, नूर क्यों नहीं, फरिश्ता क्यों नहीं, नूरानी मखलूक क्यों नहीं। इसको भी देखिएगा आज के दौर के मुसलमान का शिर्क उससे बिल्कुल उलट है जो मक्का वालों का था। मक्का वाले अल्लाह के नबी को बशर समझते थे, आज का मुसलमान शिर्क करते करते अल्लाह के नबी को बशरियत से ऊपर उठा के नूरानी मखलूक समझने लगता है। अल्लाह गलुफ से बचाए। फरमाया अगर हम फरिश्ता भी बना देते इस नबी को तो हम इसको आदमी ही बनाते, और हमारे इस फेल से फिर इन पर वही शुबा पड़ता जो अब इनको पढ़ रहा है, यानी फिर भी इन्होंने मानना कोई नहीं था। तो ये झगड़े छोड़ दीजिए, आपके अल्लाह के नबी बशर थे के नूर थे, काम कीजिए। कहीं मुझसे भी ये सवाल करे तो मैं कहती हूँ देखिए वो बशर थे के नूर थे, जरा सा साइड पे कीजिए, आपके मेरे अमल में क्या है। वो तालीमात जो अल्लाह के नबी देकर गए, आप उनको मान भी लीजिए नबी और मान भी लीजिए बशर, या मान ही लीजिए उनको नूर, जब तक आप उनके बताए हुए काम नहीं करेंगे निजात तो फिर भी नहीं होगी। तो वो बातों पे गौर किया करें जिससे आपका अपना अमल है। अकीदा तो वाजे होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, जितना सच्चा इल्म लेते जाएंगे निथरा हुआ इल्म आएगा, आपका दिल आपको बताएगा कि आप क्या थे। और वाकई आपसे पहले जो पैगंबर हुए हैं इनके साथ भी मजाक किया गया, फिर जिन लोगों ने इनसे मजाक किया था, इनको इस अजाब ने आ घेरा जिसका मजाक उड़ाते थे। आप फरमा दीजिए कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देख लो कि तकजीब करने वाले का क्या अंजाम हुआ। दावत दी जा रही है, कायनात पे गौर करो और माजी की मिसालें लो। आप कहिए कि जो कुछ आसमानों में है और जमीन में मौजूद है, ये सब किसकी मलकियत है? ये है सोल सर्चिंग क्वेश्चन, जो शुरू में फोर रिसेप्टर्स बताए थे शिर्क छोड़कर तौहीद पे आने के, उसमें एक ये है मुशाहिदा कायनात। आप कह दीजिए कि सब अल्लाह ही की मलकियत है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया है। कतबाला नफ्सिहिर रहमा, इस आयत को हाईलाइट कीजिए। आपका रब ये भी तो कह सकता था कि मैंने गजब को अपने ऊपर लिख लिया, बल्कि अर्श के पास ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पे रहमत लिखी। क्यों? आप देखिए कि सेहतमंद तो हम ज्यादा ही होते हैं ना, बीमार तो कभी कभी होते हैं, दुख तो कभी कभी आता है, सुख तो ज्यादा ही होता है। तो ये अल्लाह की रहम है जिसकी वजह से आप और मैं चल रहे हैं। 100 रहमत के हिस्सों में सिर्फ एक रहम दुनिया में, उसकी वजह से बकरी दूध भी धोने देती है और माँ बच्चे को पालती है। 99 हिस्से क्यामत के दिन अल्लाह ईमान वालों को देगा। सूरत अलअहज़ाब में आप पढ़ेंगे वकान अल्लाह बिल मोमिनीना रहीमा, तो उसके रहम पे नजरें रखिए, इंशाल्लाह एक एक करके बुराइयां छुटती जाएंगी। तुमको अल्लाह ताला क्यामत के रोज जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वो ईमान नहीं लाएंगे। ये नोट कर लीजिए, इंसान अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है ईमान ना लाकर, कलमा ना पढ़कर। तो आज वो चीजें जो आपको मुझे इस हिदायत के रास्ते की रुकावट दिखती हैं, कल क्यामत के दिन उसकी हसरत करेगा इंसान और ख्वाहिश करेगा। तो आयत 1 से 12 तक क्या देखा? पहली बात कि अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने का फितना, इससे बचना। इंसान बहुत ही नाशुक्रा है, जिंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर है, हक का मजाक उड़ाने वालों का जल्द इंजाम को पहुंचना साबित है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला आपको मुझे गुमराह होने से बचा ले। दोबारा कायनात पे गौर करके शिर्क के सारे मजाहिर को खत्म किया जा रहा है। फरमाया कि ये दुनिया जिसमें तुम चल फिर रहे हो, ये किसकी है? किसके ऊपर नजरें लगाकर देखो? वलहू मा सकन फिल लैली वन नहार, और अल्लाह ही की मिल्क हैं वो सब जो कुछ रात में और दिन में रहती हैं, और वही बड़ा सुनने वाला बड़ा जानने वाला। चलिए, आपका दिल करता है ना कि रात छोटी हो जाए, लंबी हो जाए और दिन छोटे, ताकि रोजे छोटे हो जाए, और खास तौर पे नॉर्वे और उसके गिरदो नवाह में। बुलाइए किसी बुजुर्ग को और कह दीजिए जरा दिन छोटे कर दें और रातें लंबी। कोई नहीं करेगा। ऐसी चीजों पे लोग क्यों नहीं बोलते? आज इस बीमारी को क्यों ना दूर करा सके बुजुर्गों से? कितने पीर बाबे हैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी होंगे, सिर्फ अपने कल्चर के गिर्द देखिए कितने मजार हैं, कितनी कब्रें हैं। सबको जमा करके जाकर कहिए कि अल्लाह के लिए इस छोटी सी मखलूक को खत्म कर दो। कर सकता है कोई? किया होता तो फिर आज इस लॉकडाउन में हम आप क्यों होते? असल बात यह है कि इंसान अल्लाह की कदर नहीं करता। आप कहिए कि क्या अल्लाह के सिवा जो कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, जो कि खाने को देता है और इसको कोई खाने नहीं देता। नोट कीजिएगा, बस दफा लोग अपने बुतों को प्रसाद देते हैं और इसी तरह अपने बुजुर्गों के नाम पर चढ़ावे चढ़ाते हैं। कभी अल्लाह को भी किसी ने खाना दिया? वो तो सबको देता है। तो जिसको आप देंगे वो खुदा होगा या जो आपको देता है? और किसी को माबूद करार दूं? आप फरमा दीजिए कि मुझको ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूं और तू मुशरिकों में से हरगिज ना होना। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाजदाद भी इसी अकीदे पे थे, लेकिन जब हिदायत की रोशनी जिंदगी में आती है तो इंसान ये कहकर अपना बुरा नहीं चाहता कि जहां मेरे बड़े होंगे मैं भी वहां होऊंगा। अब अक्ल का दौर है, रोशनी का दौर है, और यकीन कीजिए कि इस्लाम अपनी ये कुव्वत मनवा रहा है। आज भी यूथ, यंग नस्लें इस्लाम की तरफ आ रही हैं, हर मजहब में से आ रही हैं। इस्लाम इज द मोस्टली स्प्रेडिंग रिलीजन इन यूरोप नाउ, ये जुमले तो आपने कई बार सुने होंगे। तो ये किसी जोर जबरदस्ती पे नहीं आ रहे, क्योंकि जो यूथ है ना उसमें तासुब नहीं होता, आबा परस्ती नहीं होती, वो हर चीज में अपनी मर्जियां करते हैं, वो दीन पे भी अपनी मर्जी करते हैं। तो बड़ों को वो बात नहीं समझ आती जो अमूमन बच्चों को आती है। यही असूल अल्लाह के नबी की जिंदगी में भी देखा गया। बस आप देखिए कि बाप दुश्मन थे लेकिन बेटे अल्लाह के नबी के मुआविनीन थे। कुल इन्नी अखाफु इन असईतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, इसको हाईलाइट कीजिए। और जब कभी कोई आपका प्यारा آپ کو کسی گناہ یا نافرمانی پہ مجبور کرے تو یہ جملہ آپ یاد کر لیجئے جو آپ کہہ سکتے ہیں ایگزیجریشن کے بغیر. آپ کہہ دیجئے، میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کون مجبور کرے گا پھر آپ کو غلط دیکھنے، سننے اور بولنے پہ؟ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے. اور اگر تجھ کو اللہ کو تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر یہ عقیدے کی بات سمجھ آ جائے نا تو ہم سب سے ڈرنا چھوڑ کے اللہ سے ڈرنے لگے اور سب سے امیدیں باندھنے کی بجائے اللہ سے امیدیں باندھنے لگیں. آج بھی ان حالات کو اللہ ہی بدلے گا، دنیا کا کوئی تھنک ٹینک نہیں بدل سکا، کوئی ڈاکٹر ان حالات میں قابو نہیں پا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو عقیدہ پختہ کر کے اللہ سے مانگیے، آج کی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ ضرر کو تو ہی دور کرتا ہے، تو اللہ اس وائرس کے ضرر کو تو دور کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں قدرت رکھنے والا. اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا. کیا پتہ چلا اہل ایمان کا رویہ اور اس کی وجوہات؟ آیت نمبر 15 سے 18 تک ہم نے کیا دیکھا؟ توحید پر پختہ عمل اور شرک سے بیزاری کا رویہ ہوتا ہے. کون توحید پہ رہے گا اور کون شرک سے بیزار ہوگا؟ دو چیزیں جس کے پاس ہوں گی. نمبر ایک، یوم عظیم کا ڈر، بڑے دن کا ڈر، اس دن کوئی ماں بہن باپ شوہر نہیں پاس آئے گا. فوز المبین کی چاہ رکھنے والا. تو آج کئی لوگ ہیں جو اس دو روحے پن کا شکار ہیں، کدھر جاؤں سمجھ نہیں آتی. تو اپنے لیے فیصلہ کیجئے اپنے آپ کو قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے، کیونکہ پیچھے پڑ چکے ہیں علیکم انفسکم. اپنی فکر کرے، کوئی آگ میں جلے تو میں تو نہیں اس کے پیچھے جلوں گی. تو بتاتے رہیے لیکن خود عمل کرتے رہیے. کل ایو شعین اکبر شہادہ، آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے، ہائی لائٹ کیجیے اور دعا کیجیے ہمارے ذریعے سے یہ قرآن ساری انسانیت کو پہنچائے، ان سب کو ڈراؤں، کیا تم سچ مجھے ہی گواہی دو گے؟ یعنی جب معاشرہ آپ کے اوپر پیئر پریشر ڈالے تو کیا پھر اس کے کہنے پہ غلط باتیں کرنے لگیں گے؟ نہیں. کیا گواہی لوگ مانگیں گے آپ سے؟ کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. یہ عمل کا نقطہ، کبھی پیئر پریشر میں آ کر غلط کام نہ کریں. آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک سے بیزار کر دے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن بد نصیبی کی بات ہے کہ رسول کو حق مان کر بھی نہیں مانے. آپ خود اپنے اوپر لیجئے کہ کیا واقعی میں ہر چیز کو سن کر ماننے والی ہوں؟ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. اب قیامت کا ایک منظر دیکھے گا جس روز ہم ان تمام مخلوق کو جمع کریں گے. اور بلکہ ان آیات کو آپ سنتے وقت بالکل اپنے ذہن کو وہاں لے جائیں، کیونکہ جیسے آپ کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہاں آپ کو بار بار مختلف قسم کی جھلکیاں دکھیں گی کہ میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور کسی کے ساتھ ایک معاملہ تو دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ. پھر دیکھیے گا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ تھے نا دعوے کرنے والے، مشکل کشا، پلو پکڑنے والے، آج کدھر ہیں؟ یہ سوال ہو رہا ہے قیامت کے میدان میں. پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے. یعنی ڈر جائیں گے ایک دم، پہلے شروع میں جھوٹ بولیں گے. یہ میدان محشر کا شروع کا دور ہوگا. جیسے بچہ غلط کام کرے اور آپ ایک دم اس کو ٹوکے تو ڈر کے کہے گا میں نے تو نہیں کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد مان جائے گا. تو شروع میں انکار کریں گے اپنے شرک کا، ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمنٹ ہے कि देखो कितने झूठे हैं, सारी जिंदगी दूसरों के पल्लू पकड़े रहे और आज कह रहे हैं अल्लाह ताला हमने तो कभी शिर्क नहीं किया, और आज दुनिया में भी नहीं लोग मानते। ये वो जुर्म है कि जिसको करने वाला भी नहीं मानता, इल्ला माशाल्लाह। और इनमें बस ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं, और हमने इनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है इससे कि वो इसको समझें, और इनके कानों में डांट दे रखी है, यानी लॉक्ड है। और अगर ये लोग तमाम दलाइल को देख लें तो भी इन पर कभी ईमान न लाएं, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वामख्वाह झगड़ते हैं। ये लोग जो इनकार करते हैं यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनत बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और दिल में तासुब हो तो फिर बात समझ आती भी नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी पे तो गुस्सा करते थे कि आप क्यों हमारे बाप दादा के तौर तरीकों को बुरा कहते हैं। याद रखिए कि मक्का वालों की दुश्मनी पैगाम से थी, ये उसकी दलीलें मिल रही हैं आपको आयतों में। मदीना वालों की दुश्मनी पैगंबर से थी, उनको अल्लाह के नबी से तासुब और हसद था, तो दो ही वजूहात से शिर्क फैला और लोग इस्लाम पे नहीं आ सके। और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे दूर दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही आप को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर भी नहीं रखते, यानी अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आज भी इस मौजू पे बात करें लोग एकदम गुस्से में बिफर के उठ जाएंगे, बंद कर दो, छोड़ दो, नहीं सुनना। तो ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए हिदायत का कोई और जरिया बना दे। और अगर आप इस वक्त को देखें जब दोजख के पास खड़े किए जाएंगे, अब ये दूसरी झलकी है क़यामत के दिन की, तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं। सोचिए आप और मैं अभी इधर ही हैं, वहां जाके ये हसरत की जाए कि वापस जाएं और अपनी इसलाह करें तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे कमरा इम्तिहान में बच्चा जिसको आ नहीं रहे सवाल जवाब, तो कहता कभी एक बार वापस कमरा इम्तिहान से निकाल कर क्लासरूम में भेज दिया जाऊं तो बहुत अच्छा पढ़ूंगा। और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयात को झूठा न बतलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। क्या आपको ये तर्जमा ही किफायत नहीं कर रहा? तो मैं आप सबको एक छोटा सा मशवरा दूंगी, कभी किसी को अपने इर्द गिर्द किसी भी शिर्क में मुबतला देखें, खफी जाहरी बातनी डिक्लेयर्ड नॉन डिक्लेयर्ड सूरत अल अनाम का तर्जमा सिर्फ उसके साथ हल्का हल्का गो थ्रू करें, तो सिर्फ तर्जमा ही काफी है। आज तो मैं अपनी बात ही कोई नहीं कर रही, आप देखिए क्या आयतें इतनी स्ट्रांग हैं, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है बात करने की। सिर्फ तर्जमा पढ़ लीजिए, आपके घर में जो कुरान पाक रखा हुआ उसका ही तर्जमा पढ़ लीजिए तो आप इसको समझ जाएंगे। बल्कि जिस चीज को इससे कबल छुपाया करते थे वो इनके सामने आ गई, और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया था, और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं। नोट कीजिएगा, यानी बिलफर्ज ऐसे शिर्क करने वालों को दुनिया में भेज भी दिया जाए ना, ये दोबारा वही करेंगे जो इंसानों की एक कमजोरी होती है। और ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम जिंदा ना किए जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आखिरत का इनकार, और दुनिया में ही खो जाओ, मजे करो, मौज करो। कौन वो रिएक्शन बर्दाश्त करे जो शिर्क को छोड़ने का है? रिश्तेदारों को कौन नाराज करे, सहेलियों को कौन करे? तो अल्लाह ताला एक और झलकी दिखाते हैं कि देखो ऐसे लोग आज दुनिया में तो ये कह रहे हैं लेकिन देखना जरा क्यामत के दिन इनके साथ क्या होने वाला है। वलौ तरा इज़ वुकिफ़ू अला रब्बिहिम, कहीं जहन्नुम पे खड़ा, जहन्नुम में खड़ा किया जा रहा है या जहन्नुम के पास, और कहीं अल्लाह का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप इस वक्त देखें जब ये रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा क्या ये अमर वाकई नहीं? वो कहेंगे बेशक कसम अपने रब की। अल्लाह ताला फरमाएगा तो अब अपने कुफर के इवज अजाब चखो। ऐसा नहीं लग रहा कि वहां अल्लाह को इन पे कोई रहम नहीं आ रहा, यानी हाँ तुम बड़े भोले थे, चलो चलो जाओ फिर फरिश्तों इनको छोड़ दो, नहीं, वहां अल्लाह गजब में होगा और क्यामत के दिन अल्लाह बड़े गजब में होगा। आज दुनिया में है कतब अला नफ्सिहिर रहमा, बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिनने अल्लाह से मिलने की तकजीब की, यानी झुटलाया, यहाँ तक कि जब वो मुअय्यन वक्त इन पर अचानक आ पहुंचेगा, क्योंकि क्यामत के लिए तैयार तो थे ही नहीं, तो अनएक्सपेक्टेड होगी मुशरिक के लिए क्यामत। कहेंगे हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई, और हालत इनकी ये होगी कि वो अपने बोझ अपनी पीठों पर लादे होंगे। खूब सुन लो कि बुरी होगी वो शायद जिसको वो ला देंगे, यानी अपने भी बोझ और जिनको गुमराह किया उनके भी बोझ कमरों पे होंगे। और दुनिया की जिंदगी तो कुछ भी नहीं सिवाय लहवो लाइब के, और दारे आखरत मुत्तकियों के लिए बेहतर है। क्या तुम सोचते समझते नहीं? हम खूब जानते हैं कि आपको इनके अकवाल मगमूम करते हैं, यानी गम पड़ता है आपके दिल में इन बातों का। सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, यानी अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं अपने नबी को। اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی، ان کو ایذا پہنچائی گئی، یہاں تک کہ جب ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں. جس نے بھی توحید کی بات کی اس کو باتیں سننی پڑی، اگر وقت کے نبی، وقت کے نومز اور جو وقت کے رواج، خاندان کے طریقے چل رہے تھے اسی کو اوکے کرتے تو لوگ ان کو کندھوں پہ اٹھاتے، کوئی ان کی خدمت کرتا، کوئی ان کی خاطریں کرتا. لوگوں کو ہمیشہ یہی چیز بری لگی کہ ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں پہ کوئی تنقید نہ کرے. اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا بوجھل لگتا ہے، یعنی گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئی معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے. وہی لوگ قبول کرتے ہیں، اس کو نوٹ کیجئے گا، کیونکہ آپ تو بڑی حرص رکھتے ہیں لیکن لوگ قبول ہی نہیں کرے اسلام کو. تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں. کس بات سے؟ کہ معجزہ آنے کے بعد اگر پھر نہ آنے تو پکڑ آئے گی. اور یہ دور تھا کہ خوب معجزے مانگتے. اسی طرح کی سورہ بنی اسرائیل بھی آگے ہم پڑھیں گے، سیم ٹائم کی سوراس میں سے. اللہ تعالیٰ کائنات پہ اپنی نشانیوں پہ غور کراتے ہیں، تمہیں اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے واحد ہونے کی دلیل کیا کائنات میں نہیں ملتی؟ تو ذرا کچھ جانداروں کو دیکھ لو، اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں، یعنی اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو. ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں. اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے، اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے. آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ، کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو، مجھے نہیں پتا آج کل مزار کھلے ہیں کہ نہیں کہ لوگ جا کر ان حالات سے نکلنے کی دعائیں مانگ رہے ہوں، بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے. اور ہم نے اور امتوں کی طرف سے بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکے. چلے آج کے حالات کے مطابق عمل کا نقطہ عاجزی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالی انشاءاللہ مدد کریں گے ان حالات سے نکلنے کی. آج بھی اگر اللہ کو نہ پکارا تو پھر کب پکاریں گے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ کس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو دھوکے ہی دیتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد لینے سے دور رہتا ہے، اور غیروں کو، کمزوروں کو پکارتا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے تمام بھائی بہنوں کے شرک کو دور کر دے جو صرف دیکھی دکھائی، سنی سنائی، اور اپنے باپ دادا کو وہ کام کرتے دیکھنے کی وجہ سے اس طرح کے کاموں میں کھو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے اور ہمیں بھی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. ہمارے اندر بھی جو ڈھکا چھپا شرک ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال دے. سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کی اختیار نہ کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا. پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، پچھلی قومیں بھی شرک کی وجہ سے ہلاک کی گئی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو کیا دیکھا ہے 34 سے 45 تک؟ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ہے. دعوت حق پر لبیک وہی کہے گا جو ماننے والا ہوگا. قدرت کے معجزات چاروں طرف موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ آفات، وبائیں، بیماریاں جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل ہی لے لے और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है कि ये तुमसे फेर दे। आप देखिए तो हम किस तरह दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला इनकी आंखें खोलने के लिए खूबसूरत अंदाज भी इख्तियार करते हैं, लेकिन इनकी तवज्जो फिर भी अल्लाह ताला की तरफ कम ही जा रही है। आप कहिए, ये बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ पड़े, ख्वाह अचानक या एलानिया, तो क्या सिवाय जालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? यानी अल्लाह की पकड़ जालिमों पे होती है, और हम पैगंबरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो बिशारत दें और डराएं। फिर जो ईमान ले आए और दुरुस्ती कर लें, सो इन लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और न वो गमजदा होंगे। यानी आज के इन हालात में भी वही लोग मुतमईन खूल काम बैठे हुए हैं जिनकी नजरें अल्लाह पे हैं। और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएं, इनको अजाब पहुंचेगा इस वजह से कि वो नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला में नाफरमान होने से बचाए। आप कह दीजिए, ना तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं गैब जानता हूं, और न मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। नोट कीजिएगा इस आयत का नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकायद में जो शिर्क है, उसकी ये दलील है। नंबर से ही आपको समझ आ जाएगा लफ्जों में कि अल्लाह के नबी का मुकाम क्या था। मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है इसका इत्तबा करता हूँ। आप कहिए कि अंदर भी ना कहीं बराबर हो सकते हैं, सो क्या तुम गौर नहीं करते? तो क्या पता चला कि बाप दादा के मुंह से जो बातें सुनी होती है ना, फिर उसके बाद फितना क्या होता है कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी गलत नजरियात रखते हैं। तो यहाँ नसीहत की गई कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के खजाने नहीं हैं, और आपके पास गैब का इल्म भी नहीं था। हाँ, जितना जब अल्लाह चाहे तो देता, और आप फरिश्ता यानी नूरे मुजस्सम नहीं थे। हम तो इतने जौक और शौक से वो नाते पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह के नबी की ये सिफात पेश की जाती हैं। ला इल्मी की बात है, अल्लाह ताला इल्म के साथ हमारी इसलाह कर दे। और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात का अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैर अल्लाह हैं, ना इनका कोई मददगार होगा ना शिफात करने वाला, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं। और इन लोगों को ना निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास इसकी रजामंदी का इरादा रखते हैं। इनका हिसाब जरा भी आपके मुतल्लिक नहीं, और आपका हिसाब जरा भी इनके मुतल्लिक नहीं कि आप इनको निकाल दें, वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। क्या पता चला कि जो सीखने और समझने के लिए आता है, शौक से आता है, उसको आप वेलकम कहिए। और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए से आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें, क्या ये वो लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह ताला ने फजल किया? क्या ये बात नहीं कि अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को खूब जानता है? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या देखा आयत 46 से 53 में? रसूलों के आने का मकसद खुशखबरियां देना और डराना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था? वला आलमुल गैब, यानी मैं गैब को जानने वालों में से नहीं। कुरान से हिदायत किसको मिलेगी जो हिदायत लेने के लिए इसको सुनेगा? और फकरा की इज्जत अफजाई का हुक्म, यानी वो कमजोर लोग जो दुनियावी एतबार से तो इतने ज्यादा कह लीजिए पैसे वाले नहीं, लेकिन इल्म का शौक रखते हैं, जब ऐसे लोग आए तो क्या करो? यानी इल्म वालों को या इल्म लेने के लिए आने वालों को वेलकम कहना, ये अल्लाह के नबी की भी सुन्नत थी, और अल्लाह ताला इसी का हुक्म भी इधर फरमा रहे हैं। कैसे? व इजा जाक अल्लसीना यूमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। ये लोग जो आपके पास आए, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मे मुकर्रर कर लिया। दूसरी बार इस सूरत में ये पैगाम आ गया कि कतबाला नफ्सिही रहमा, कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत से, यानी शिर्क जैसा भी काम कर चुका है, फिर इसके बाद तौबा कर ले और इसलाह रखे, तो अल्लाह की ये शान है कि वो बड़ी मगफरत करने वाला और बड़ी रहमत वाला है। देखिए, जिंदगी में अगर बड़े से बड़ा शिर्क करने वाला या जिससे हो गया वो तौबा कर लेगा, अल्लाह ताला फौरन माफ करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ताना नहीं देते पिछली जिंदगी के कामों का। इसी तरह हम आयात की तफसील करते रहते हैं, और ताकि मुजरिमीन का तरीका जाहिर हो जाए, आप कह दीजिए कि मुझको इससे रोक दिया गया कि इनकी इबादत करूं जिनको तुम लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की तबाह न करूंगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊंगा और राह रास्त पर चलने वालों में ना रहूंगा। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी ने जो बहुत बड़ा काम किया वो शिर्क को खत्म किया। आज भी कुछ जगहें शिर्क के अड्डे बन चुके, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि उसको बदलने में और उनकी इस्लाह में अल्लाह ताला हमें मुआविन बना ले, क्योंकि आबा परस्ती के फितने में मुबतला दौरे हाजिर के मुसलमान शिर्क अकबर तक पहुंच जाते हैं बाज़ दफ़ा। आप देखिए कि जो कलमा ही नहीं पढ़ता उनका तो इधर कोई जिक्र ही नहीं है ना। हम तो फिक्र करें कलमा गो मुशरिकों के मज़ारात पर वो मरासम अबूदियत जो आज बड़े आम है, यानी अमूमन लोग कलमा पढ़ने के बावजूद नासमझी में और बाप दादा को वही काम करता देखकर क्या काम करते हैं जिस पे फिर शिर्क का इत्तलाक होता है। पहली बात है कि शिर्क फिर दुआ होती है, पता उन बुजुर्गों से दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं जो कि सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, दुआएं करने में उनके वसीले बनाते हैं, हालांकि अपने नेक अमाल को और अल्लाह के सिफात को वसीला बनाना चाहिए। फिर उनसे पनाह तलब करते हैं जबकि आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतान रजीम। कभी आपने आउज़ु बिल्लाही में लफ्ज़ अल्लाह की जगह किसी बुजुर्ग का नाम पढ़ा या सुना? तो फिर क्यों किसी और को नाम में शामिल किया जाए? फिर इसी तरह मदद के लिए पुकारने लगते हैं, हालांकि मुसलमान क्या कहता है, या कना बुदू या कनस्ताई, कि मैं तो सिर्फ रब से मदद मांगता हूँ। फिर इसी तरह शिर्क फिल इबादत भी होने लगता है, वो क्या है, मसल वहां जाकर सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, क्याम करते हैं, बस लोगों को देखा गया कि उल्टे पांव वापस आते हैं कि कब्र को पीछा ना हो जाए। ऐसी चीजें तो खाना काबा के दरवाजे के लिए ना कभी की साहबा ने, जो आज कुछ लोग ना समझी में करते हैं। फिर इस तरह बास जगह कब्रों के तवाफ होते हैं, मजावर बनते हैं, तो ये शिर्क फित इबादत होता है। एक और सवाल है कि अबा परस्ती के फितने में मुबतला शख्स का दुनिया में क्या हाल होता है, क्योंकि देखिए ना उम्मीद तो दूसरे पे लग गई, तो फिर नफ्स की बातें तो मानेंगे, तो अमूमन शरीयत की बजाय ख्वाहिशात और बाप दादा की अंधी तकलीद करने लगते हैं। अल्लाह कुरान और रसूल से ताल्लुक कमजोर होगा, ऑफकोर्स जब आपकी मोहब्बतें दूसरी तरफ जाएंगी तो पीछे वालों से ताल्लुक जरूर कमजोर होगा, आप माने ना माने। इसी तरह दुनिया में फितने और परेशानियां आएंगी, ये तो अल्लाह मनवा ही रहा है आजकल। और इसी तरह रस्मी सालाना नेकियों की तरफ रग़बत होती है, यानी आज फलां त्यौहार है, आज उर्स हो रहा है, आज वहां ये शामें गरीबां फलां फलां, इस तरह की रस्मी चीजें कि एक दफा साल में कर लो बस, रोज 5 नमाजें कौन पढ़े, ये मुराद है। और इसी तरह इबादत को नेकी समझ कर करना शुरू कर देता है। सवाल पैदा होता है ऐसे काम करने वालों का आखिरत में क्या हाल होगा। बड़े बोझल दिल से बता रही हूँ आपको। पहली बात है कि आखिरत में थकन और चेहरे बुझे हुए होंगे, फिर इनके जो अच्छे अमाल किए भी थे इन्होंने उनका सवाब नहीं मिलेगा, शिफाते रसूल से महरूम कर दिए जाएंगे, अल्लाह का गजब इन पर टूटेगा, नाकामी और जहन्नम इनका नसीब होगी, और दुनिया में वक्त बर्बाद करने पर हसरत होगी। दिल चाह रहा है ना कि सब काम छोड़ के बस दुनिया से शिर्क के फितने को मिटाने की कोशिशें करें। ये वो मुस्तकिल फितना है जो लॉकडाउन से पहले भी था और आज भी है और रहेगा, इसकी फिक्र कीजिए। फिर इसी तरह आप देखिए इसके बरक्स मोमिनीन का हाल क्या होता है जो ऐसी चीजों में नहीं पड़ते, वो क्या करते हैं, दुनिया में ख्वाहिशात की बजाय शरीयत पे अमल करते हैं। अल्लाह ताला इन सारी सिफात में आपको मुझे शामिल कर दे। अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं, कुरान और सुन्नत से गहरा ताल्लुक रखते हैं, दुनिया में गुमराही और फितनों से महफूज रहते हैं, और सुकून और इत्मीनान उनकी जिंदगी में होता है, यानी इवन सारी दुनिया जिस वक्त परेशान है वो उस वक्त भी मुतमईन होके बल्कि और फोकस होके अपने काम करते हैं। एक और जुमला देख लीजिए, एक और कैटेगरी के, फिर ऐसे नेक लोगों का आखिरत में क्या हाल होगा, यानी जो शिर्क से बच गया और दुनिया में अपने मकसद पे नजर रखी, तो आखिरत में ऐसे मोमिनीन का हाल क्या होगा, थकन से दूर शादाब चेहरे, मुस्फिरा स्माइली फेसेस, इस तरह इनको अमाल का पूरा सवाब मिलेगा, हौज़े कौसर से पानी नसीब होगा, और अल्लाह ताला आप सब जो सुन रहे हैं उन सब को हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमाए, और जो सुनवा भी रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी, अल्लाह की रजा और खुशी मिलेगी, और कामयाबी और जन्नत उनका नसीब होगी। अल्लाह ताला आपको मुझे ये अता फरमा दे। आगे देखिए आयत 57 कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा, कि अब देखिए इतना क्लियर कट मैसेज वो कैसे बर्दाश्त करते। हो सकता है इस वक्त भी कुछ लोगों को सुनना मुहाल लगे, लेकिन ये कड़वी गोली सह लीजिए, क्योंकि जहर भी कभी करता है कारे तरियाकी। आज की ये कड़वी बातें हो सकता है जहन्नुम के कड़वे पानी पीने से हमें रोक लें। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से, और तुम इसकी तकजीब करते हो, जिस चीज की तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं, हुक्म किसी का नहीं बजुज अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देता है, और सबसे अच्छा फैसला करने वाला वही है। आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो, तो मेरा और तुम्हारा बाहमी फैसला हो चुका होता। यानी मुझसे मैं खुद से नहीं दे सकता, और जालिमों को अल्लाह ताला खूब जानता है, और अल्लाह ताला ही के पास हैं गैब की कुंजियाँ। इनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के, और वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह की कायनात काफ़ी है आपको मुझे तौहीद सिखाने के लिए, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो इसको भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीख हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज गिरती है मगर ये सब किताबे मुबीन में है। इतना इल्म है आपके मेरे रब का, कहाँ किसी इंसान का ये इल्म होगा। और फिर आप उससे दुआएं मांगें और उससे डरें और उसका खौफ हासिल करें, तो ये तो ना कदरी होगी ना शुक्री होगी और नाफरमानी होगी। और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक गोना कब्ज कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो इसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि तुम मियादे मुअय्यन तमाम कर लो, यानी अपनी जिंदगी की मोहलत पूरी करो, फिर इसी की तरफ तुमको जाना है, फिर वो तुमको बतलाएगा जो कुछ तुम किया करते थे। दुआ कीजिए कि दुनिया में मेरे काम ठीक हो जाएं। तो आयत 54 से 60 में क्या देखा? मोमिनों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से सलामती के वादे हैं। गैर अल्लाह की इबादत और परस्तिश सबसे बड़ी गुमराही है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है, और वफात का इत्तलाक नींद पर भी होता है, यानी नींद भी मौत की एक शक्ल है। इसलिए आपको तो जन्नत में नींद नहीं, वहां मौत भी नहीं है। और वही अपने बंदे के ऊपर गालिब है, बरतर है, और तुम पर निगहदाश्त करने वाला भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है, इसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं और वो जरा कोताही नहीं करते। फिर सब अपने मालिक के हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो, फैसला अल्लाह ही का होगा और वो बहुत जल्द हिसाब लेगा। आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की जुलुमात से निजात देता? एक एक सेकंड का पॉज है सोचने के लिए। तुम इसको पुकारते हो तो गिड़गड़ाकर और चुपके चुपके कि अगर तू हमको इनसे निजात दे दे तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। यानी जब मुश्किल में इंसान पड़ता है तो सब इधर उधर के सहारे भूल जाते हैं। मक्काले भी यही करते थे, छोटी छोटी चीजें अपने बुतों से मांगते थे और बड़ी चीजों के लिए अल्लाह को पुकारते थे। आज का मुसलमान तो शायद इससे भी बिगड़ गया। वो कहता है छोटे छोटे काम अल्लाह से ले लो, जब कोई बड़ा काम पड़ेगा तो फुलां बाबा जी के दर पे जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इनसे निजात देता है और हर गम से तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो। आप कहिए कि इस पर भी वही कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तो तुम्हारे पांव तले से, या ये कि तुमको गिरोह गिरोह करके सबको भड़ा दे, और आज ये हो रहा है, और तुम्हारे एक दूसरे को लड़ाई का मजा चखा दे। आप कहिए तो सही, हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद वो समझ जाए। आपका दिल भी गवाही देता होगा मेरे दिल की तरह इस वक्त के कुरान की आयतें किस तरीके से अल्लाह के एक होने और कायनात पे उसके कंट्रोल होने को साबित कर रही हैं, और आपकी कौम इसकी तकजीब करती है हालांकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तायुन नहीं किया गया। हर खबर के वकूह का एक वक्त है, जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। फिर जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयात में ऐब जोई कर रहे हैं, तो इन लोगों से किनारा कश हो जाइए यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाए, और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठे। भूल के भी ऐसी महफिलों का हिस्सा मत बनिए जहाँ अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ा जाता है। फिर क्या करें, किधर जाएं? नेक लोगों के पास वो कौन है? और जो लोग परहेजगार हैं इन पर इनकी बाज पोरस का कोई असर ना पहुंचेगा, और लेकिन इनके जिम्मे नसीहत कर देना है, शायद वो भी तकवा इख्तियार करे। नसीहत करते रहिए, ना सोचिए कि लोग नहीं मानेंगे, और ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहिए जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है। खुद सोचिए किस तरह, और दुनियावी जिंदगी ने इन्हें धोखे में डाल रखा है, और इस कुरान के जरिए से नसीहत भी करते हैं ताकि कोई शख्स अपने किरदार में इस तरह फंस के ना रह जाए कि कोई गैर अल्लाह इसका ना मददगार हो ना सिफारशी, और ये कैफियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले तब भी इसे ना लिया जाए। ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब फंस के इनके लिए नहायत गर्म पानी पीने के लिए होगा। अब मुशरिक की सजा देखिए आखरत में, और दर्दनाक सजा होगी, वजह अपने कुफर के सबब। क्या देखा 61 से 70? मुश्किलों और मुसीबतों में सिर्फ अल्लाह बचाता है, यकीन कीजिए इस बात का। अल्लाह के अजाब की तीन सूरतों का तस्करा हमने पढ़ा, और इसी तरह बुरी महफिलों से बचने का हुक्म, और अमल बिर मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फर्ज अदा करना है, हर हाल में, हर जगह, हर मुमकिन, और दीन को खेल तमाशा बनाने वालों का बुरा अंजाम। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे। तो बहुत कुछ पढ़ लिया आज, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला इसके अगर आधे पे भी अमल की तौफीक दे दे तो ये वक्त वर्थ इट है। अपने आप से कुछ वादे कीजिए आज के दिन के इस सबक के अख्तिताम पे, क्या बनेगा उस दिन अगर हम उस दिन पकड़े गए? क्या बनेगा मेरे उन प्यारों के साथ जो आज भी जानते पूछते या अनजाने में शिर्क का शिकार है, अल्लाह की कदर नहीं करते और कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं अल्लाह को? जितना ज्यादा आप इस चीज पे गौर व फिक्र करते जाएंगे आपका दिल खुलता ही जाएगा। आप इसके ऊपर गौर करेंगे अल्लाह ताला दिल खोलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर वसुन्न जज़ा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वतूबु इलैक।